ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्लोक 20 से प्रारंभ करते हैं, 16-20। उत्तिष्ठस्व पुरुषां भगवन्तां जनार्दनां सर्वभूतगुहावासां वासुदेवां जगद्गुरुं। उपतिष्ठस्व पुरुषां भगवन्तं जनार्दनं सर्वभूतगुहावासं वासुदेवं जगद्गुरुं। उपतिष्ठस्व, आराधना करो। पुरुषां, जो सब तरह से पूर्ण हैं और बहुत अधिक दान देते हैं। भगवंतं, जो 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण हैं। जनार्दनं, जो भक्तों के अपराध को सह लेते हैं, भक्तों पर कृपा करते हैं, पालन करते हैं। सर्वभूत गुहावासं, समस्त जीवों के हृदय रूपी गुफा में जो रहते हैं। वासुदेवं, जो इस जगत को उत्पन्न करते हैं, सब में समाये हुए हैं। जगत गुरु, वो ब्रह्मा आदि समस्त जीवों के हितकर्ता हैं। तो आपके धैर्य के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। आवृत्ति के समय भी बहुत धैर्य ही रखना पड़ता है कि कब कथा चालू होगी कब। लेकिन यह भी एक कीर्तन है और इसके पहले जो गीत हो रहा था वह भी कीर्तन है, भजन है। भगवान का नाम गाया जा रहा है, भगवान का गुण गाया जा रहा है और इन संस्कृत के श्लोकों में भी भगवान का ही गुण हो रहा है। इसकी आवृत्ति करना महामंत्र के कीर्तन जैसा ही है। आप धैर्य रखे और आज मैं आपसे विनय करूंगा कि कुछ और भी ज्यादा देर धैर्य रखेंगे 8:30 के बाद भी, क्योंकि प्रसंग बहुत लंबा है। तो हो सकता है कि 9 बजे, 9 से ज्यादा नहीं बजाऊंगा। मेरी आदत नहीं है टाइम एक्सीड करने का, लेकिन आज कुछ प्रसंग ऐसा है कि आधा घंटा बढ़ सकता है। स्वीकार है ना? जय, धन्यवाद। इस स्थान पर कल कथा हो रही थी कि माता अदिति अपने पति देव श्री कश्यप जी से रो रो करके कह रही थी कि हमारे पुत्र स्थान से निकाल दिए गए हैं, उनका स्वर्ग छीन लिया गया है और उनका यश और श्री तेज सब कुछ छीन लिया गया है। आप ऐसी कृपा करें कि हमारे पुत्र फिर से स्वर्ग पा जाए। आप समर्थ हैं, आप प्रभु हैं, भगवान का आपने भजन किया है, आप में बहुत शक्ति है, आप कृपा कीजिए। तो श्री कश्यप जी थोड़ा मुस्कुराने लगे और लगे कहने की, देखो इतने बड़े व्यक्ति में भी इतना अज्ञान, ये हमारा पुत्र है, ये हमारा पति है। तो उन्होंने 1.5 श्लोकों में उनको उसको ज्ञान दिया। अहो माया बलम विष्णु स्नेह बद्धमिदम जगत, ये सारा संसार, देवता हो चाहे दैत्य हो, मनुष्य हो, पशु पक्षी, सभी स्नेह के बंधन में बंधे हुए हैं। भगवान ने वास्तव में सब में स्नेह दिया है, अफेक्शन, स्नेह के कारण एक दूसरे का पालन करते हैं, प्रेम करते हैं। ये भगवान की माया का बल है। कहां यह अनात्मा शरीर एक दिन छीन लिया जाता है, छूट जाता है, भौतिक देह है और अनात्मा है, आत्मा नहीं है, स्वरूप नहीं है। आत्मा कहां प्रकृति से पर है, लेकिन के कश्य पतिपुत्र अद्य मोहय वही कारण, कौन किसका पुत्र है और कौन किसका पति है, ये कोई भी संबंधी, लेकिन मोह ऐसा है, अज्ञान, देह में अहंता और स्वजनों में ममता, ये अहंता ममता ही ये सब राग द्वेष हर्ष विषाद कराती रहती। इस कहने का उनका आशय था कि प्रिय तुम छोड़ो ये सब मोह जाल, भगवान का भजन करो, कोई राजा बने कुछ भी हो। लेकिन इस पर माता अदिति खिन्न हो गई, रोने लगी। तब उसको सांत्वना देते हुए कश्यप जी यहां पर समझा रहे हैं। बहुत सुंदर संदेश है प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक व्यक्ति का पुत्र है इस संसार में और संबंधी हैं, स्त्रियों के पति हैं, सब हैं। कि जो कश्यप जी बात कह रहे हैं देव माता अदिति के लिए, अपनी पत्नी के लिए, वह बात सबके लिए कही जा रही है। कथा सुनने का यही मतलब है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि माता अदिति को उपदेश हो रहा है, हमको नहीं हो रहा है। कश्यप जी जो एक परम वैष्णव थे और व्यवहार में बहुत दक्ष थे, किसी भी पत्नी को भले आपस में उनमें मतभेद हो, लेकिन सबको वे भगवान की भक्ति में लगाते थे। अद्भुत उनमें दक्षता थी। जैसे लास्ट ईयर जो कथा हुई थी, तो दीति चाहती थी कि उसको इंद्र का वध करने वाला पुत्र चाहिए, और यहां पर आज सुन रहे हैं कि इंद्र की माता ये चाहती थी कि इंद्र राजा बने, इंद्र राजा बने। तो एक स्त्री चाहती है इंद्र राजा बने, उसका राज छीन लिया गया, असुर सब मारे जाए, और दूसरी स्त्री कह रही थी कि इंद्र मारे जाए। इसके पहले की कथा है ये। तो कश्यप जी ने दीति को इस ट्रिक से लगाया भगवान की भक्ति में कि एक साल भजन करने पर उसका हृदय बिल्कुल शुद्ध हो गया, इंद्र के प्रति द्रोह खत्म हो गया। ये भगवान की भक्ति का प्रभाव होता है। कितना भी बुरा हृदय हो, क्रूर हो, दोषपूर्ण हो, काम हो, विकार हो मन में, यदि भगवान से संबंध किया जाए तो भगवान परम पवित्र हैं, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भगवान, वो हृदय में आकर के या वाणी पर नाम के रूप में आकर के उस शुद्ध कर ही देते हैं। भगवान का ऐसा स्वभाव है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति कृष्ण के भजन में अयोग्य नहीं है, सभी योग्य कैंडिडेट हैं कृष्ण की शरण लेने के लिए। लास्ट ईयर की कथा से मिलान कीजिए, दीति में बहुत हिंसक भाव था, अदिति में भी यही बात है, लेकिन इतना उत्कट नहीं है, कुछ कम है। वो चाहते हैं कि उसका बेटा राजा हो, इसके लिए अगर असुर मारे जाए तो ठीक है, और नहीं अपने आप दे दें तो ठीक ही है। लेकिन दीति तो चाहते थे कि इंद्र का वध हो, क्योंकि इंद्र ने हमारे दोनों पुत्रों की हत्या करवाया है भगवान विष्णु से, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप की हत्या भगवान ने किया था, लेकिन इंद्र के कहने से। तो माता दीति भी भगवान के प्रति दोष दृष्टि नहीं करती थी, वो कहती भगवान तो भक्त वत्सल है, जो भक्ति करेगा तो उसका पक्ष लेते, लेकिन ये भाई होकर के क्यों मरवाया हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष को, तो उसका वध करने वाला मैं पुत्र चाहती हूं अपने पति से। इन्हीं कश्यप जैसे उसने निवेदन किया, उसका समाधान जैसे तैसे हो गया, उसका हृदय शुद्ध हो गया और उसने एक साल व्रत किया, तो उसे 49 पुत्र प्राप्त हुए भगवान की कृपा से। इंद्र उन पुत्रों का वध करना चाहते नहीं कर सके, तब ये 49 पुत्र इंद्र को दिया माता दीति ने, कहा कि बेटा तुम इनको ले जाओ, मैं नहीं चाहते हूं कि असुर के समाज में रहे। ऐसी कृपा किया दीति ने। और यहां पर प्रसंग है कि माता अदिति जो देवताओं की मां है, देवताओं के अपने पुत्रों की दुर्दशा देखकर उनका स्थान छीन लेना, धन छीन लेना, वो अपने पति से आग्रह कर रहे हैं कि हमारे पुत्र राजा होना चाहिए स्वर्ग का। देखिए तब कश्यप जी ज्ञान दिए, लेकिन लगता है कि वो जानते थे कि ये ज्ञान असर नहीं करेगा इसको, इसीलिए तो 15 श्लोक में ज्ञान दिए। वो जानते थे कि ये ज्ञान काम नहीं करेगा, इसको समझेगी नहीं अदिति। इतना स्पष्ट ज्ञान अदिति के समझ में नहीं आ रहा था, मैं देह नहीं हूं इसलिए देह के संबंधी मेरे नहीं हैं, इस बात को नहीं समझ रही थी। परंतु भगवान में उसकी परम श्रद्धा थी, ज्ञान नहीं था लेकिन भगवान के प्रति श्रद्धा थी, भक्ति थी। देखिए वही हृदय जिसमें कि इतना क्रूर विचार है कि असुर मारे जाएं, और ममता भरी हुई है कि मेरे पुत्र राजा बने, फिर भी वह स्त्री भगवान के भक्ति के लिए योग्य थी। ज्ञान प्राप्ति के लिए उचित कैंडिडेट नहीं थे, पर भक्ति करने के लिए उचित कैंडिडेट थे। कारण क्या है कि प्रत्येक जीव भगवान का अंश है, और भगवान से प्रेम करने का सबका सह जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वरूप सिद्ध अधिकार है। कृष्ण से प्रेम कर सकता है, ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति बुरा कर्म कर दिया, कठोर कर्म कर दिया, कुछ किया तो अब वो कृष्ण की भक्ति नहीं कर सकता किसी भी दशा में और किसी भी स्थान में, गर्भ में, मंदिर में, ऑफिस में, या पाठशाला में, खेत में, दुकान में, कहीं भी कृष्ण से प्रेम करने का अधिकार है जीव को। कोई स्थान बाधित नहीं कर सकता, कोई कर्म बुरा से बुरा कर्म भी किसी को अयोग्य नहीं बना सकता है। सत कुल विप्र नहि भजन एर योग्य, और इसका दूसरा लाइन है, और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ऐसा नहीं कि कोई ब्राह्मण वंश में जन्म लिया है तो वह कृष्ण का भजन करने के योग्य है, और कोई हीन वंश में जन्म लिया है तो भजन में अयोग्य है। नहीं नहीं, सम अधिकार है सबका। बल्कि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि दीने रे अधिक दया करे भगवान, भगवान अधिक कृपा दीनों पर ही करते हैं, और उन बातों को मान लेते हैं। हम लोग तो प्रचार करते हुए देख रहे हैं सारे संसार में, जो उच्च वर्ण के लोग हैं वे भगवान कृष्ण की भक्ति कम करते हैं, सब जगह देखा गया है, और दीनहीन लोग भगवान का भजन करते हैं, समझते हैं, वो बहुत प्रतिकार नहीं करते हैं। और कुलीन ब्राह्मण पढ़े लिखे व्यक्ति को अभिमान रहता है कि मैं बड़ा हूं, मैं क्यों करूं ये सब। तो ऐसा हृदय, माता अदिति जैसा हृदय जो पुत्रों की ममता से भरा हुआ है और क्रूर विचार है, असुरों का वध हो, उनसे राज छीना जाए, स्वर्ग छीना जाए, तो ऐसा हृदय भगवान की भक्ति के योग्य है, अयोग्य नहीं हो गया। यही जीव का स्वरूप है, भगवान से प्रेम करना, भगवान की पूजा करना, भगवान में मन लगाना, यही स्वरूप है। और किसी की आराधना करना ये जीव का स्वरूप नहीं है। भगवान से संबंध शून्य होकर के ज्ञान में रहना या वैराग्य दिखाना, ये सब जीव का स्वरूप नहीं है। जीव का स्वरूप है जैसे तैसे कृष्ण से प्रेम करना, क्योंकि जीव कृष्ण का अंश है। ममई वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन, केवल भगवान कह सकते हैं किसी को कि यह मेरा है, और किसी को राइट नहीं है कहने का। कहता है ठीक है व्यवहार में काम चलावे, लेकिन समझे कि हमारा कोई नहीं है, न तो उसका अंश है उत्पन्न किया हुआ है, न उसका पालन पोषण वो कर रहा है। भगवान का अंश है जीव और भगवान पालन पोषण कर रहे हैं। जन्म देने वाले ने दे दिया, लेकिन ये सूरज का प्रकाश किसकी व्यवस्था है, जरा विचार कीजिए। प्रकाश की जरूरत है ना, ये भूमि चाहिए बसने के लिए। तो जो माता पिता जन्म दिए वे अपने देह से कोई भूमि थोड़े निकाले हैं, पहले से जीव को प्राप्त है। और मोटर गाड़ियां बनती है, घर बनता है, ये सब सामान उपकरण भी धरती में भगवान ने रखा है। तो वास्तविक माता पिता, वास्तविक बंधु, वास्तविक गुरु सब कुछ भगवान है, कृष्ण है। जैसे कोई किसी का पुत्र है यदि मान लीजिए पुत्र पागल हो जाए या निर्धन हो जाए, हॉस्पिटलाइज्ड हो जाए, तो क्या उस समय पिता को पिता कहने का उसका अधिकार नष्ट हो जाता है? नहीं, जब भी चेतना आएगी तो अपने पिता को वो पिता कहेगा, अपने पापा को पापा कहेगा। कोई कहेगा नहीं, तुम पहले रोग से मुक्त हो जाओ तब पिता कहना चालू करो, ये पागलपन है वास्तव। तुम पहले ये करो, शुद्ध हो जाओ, ये करो तब कृष्ण का नाम लो, यह करो, ऐसा विधान नहीं है। पहले कृष्ण का नाम लो, पहले कृष्ण से संबंध जोड़ो और वे प्रभु कृपा करके सब शुद्धि कर देंगे। वो धन देंगे, मनोरथ पूरा करेंगे और सारा दोष जीवन का वो हर लेंगे, उनका एक काम है। परंतु हम लोगों का काम है कृष्ण को, कृष्ण के साथ अपने संबंध को समझना, उनकी शरण लेना। तो कश्यप जी इस साइंस को जानते थे, अतः उन्होंने अपनी पत्नी को तुरंत कहा, यह श्लोक कहते हैं, उपतिष्ठ स्वपुरुषम भगवंतम जनार्दनम। ठीक है तुम चिंता मत करो, तुम भगवान, तुम्हें जनार्दन की स्तुति पूजा करो, पुरुष की पूजा करो। सबसे पहले कहा पुरुष का अर्थ ही है भगवान विष्णु। शास्त्र में यदि केवल पुरुष शब्द का प्रयोग किया जाए, चाहे पुरुषोत्तम का, तो उसका अर्थ होता है भगवान। पुरु का अर्थ होता है बहुत अधिक, और संस्कृत में स दाने, स का अर्थ दान देना। तो जो बहुत अधिक दान दे, बहुत अधिक, जीव उतना कामना भी नहीं कर पाएगा जितना भगवान देते हैं। जीवों को बहुत देते हैं, खिलाते पिलाते हैं, भक्तों को बहुत देते हैं, इसलिए उनको पुरुष कहते हैं। और पुरुष का एक अर्थ है जो बिल्कुल पूर्ण है, धन में, जस में, किसी भी विषय में वो पूर्ण है, तो उनको पुरुष कहते हैं। अच्छा, पुरुष का भजन करो। जो स्वयं अपूर्ण है, स्वयं दरिद्र है, उसका भजन करके क्या करोगी? इसका मतलब है कि देवताओं का भजन निषेध कर रहे हैं। अपनी रोती हुई पत्नी को कह रहे हैं कि प्रिय, तुम्हारे मनोरथ को केवल पुरुष पूरा कर सकते हैं, विष्णु पूरा कर सकते हैं, और किसी में सामर्थ्य नहीं है। तो पुरुष शब्द के द्वारा पूर्णता बोध कर रहे हैं। तो जो पूरा है, जिसमें सर्वशक्ति है, वही किसी के मनोरथ को पूरा कर सकता है। तो माता अत्री ने कहा कि आखिर जो इतने बड़े हैं तो इतने गरीब लोगों पर ध्यान देंगे वे? तब कश्यप जी कहते हैं जनार्दनम, वे जनार्दन है। अर्दन याचना के शब्द में भी होता है और अर्दन दान के भी अर्थ में होता है। वे भक्तों की रक्षा करते हैं, भक्तों का पालन करते हैं, जन को अपने भक्तों का पालन करते हैं, उनका स्वभाव है। अथवा जन का अर्थ है जन्म मृत्यु में पड़ा हुआ व्यक्ति, जो जन्म मृत्यु के अधीन है उसको भगवान बहुत सहारा देते हैं। और जन का एक और भी अर्थ है बलि महाराज, बलि महाराज उनके भक्त हैं। ये कश्यप जी के मुख से सरस्वती अपने आप अर्थ निकल रही, अपने जन से वे याचना करेंगे। भगवान का यहां तक स्वभाव है, ये निकल रहा है शब्द कि भगवान अपने भक्त के लिए इतना काम करते हैं कि भिखमंगा ब्राह्मण बनकर बलि से भीख मांग कर दे दें। तो अपने जन के लिए, अपने इंद्र के लिए या तुम्हारे लिए, भगवान अपने जन से भीख भी मांगेंगे। ये भविष्य में होने वाली लीला स्फुरित हो रही है वाणी पर अपने आप। अर्दन कार्थ यदि याचना किया जाए, जन अर्दन बलि से याचना करेंगे और देंगे, ये अर्थ हुआ है। ये जनार्दन है। कौन ऐसा व्यक्ति जो इतना बड़ा हो करके और अपने भक्त के लिए भीख मांगे? माता अदिति के 12 दिन के व्रत से प्रसन्न होकर भगवान बलि महाराज के पास गए, एक असुर के पास, और उनको भीख मांगने में थोड़ी भी शर्म नहीं आई। एक असुर के पास हाथ पसारने में, और यहां तक छल पूर्ण झूठ बोलने में भी, कि थोड़ी सी जमीन चाहिए चाहिए, क्लियर खोलकर नहीं कहे कि हमको पूरा ब्रह्मांड चाहिए। तो भगवान ने ये सब लीला के द्वारा दिखा रहे हैं कि मैं अपने भक्तों के मनोरथ की पूर्ति के लिए, जहां ऐश्वर्य प्रकट करना है तो कुछ भी ऐश्वर्य प्रकट करूंगा, युद्ध करूंगा, ये करूंगा, और जहां युद्ध उचित नहीं है, जैसे बलि महाराज से युद्ध उचित नहीं था, तो वहां मैं भीख मांग करके भी अपने भक्त का मनोरथ पूरा करता हूं। भगवान भीख मांगने गए तो तीनों लोक भीख में मांग कर लाए, तो भगवान का भीख भी तो बहुत बड़ा होगा ना। भगवान जो भीख मांगे तो भगवान जैसा भी वो भी महान होगा। भीखमंगा बने तो पूरा ब्रह्मांड भीख मांग करके लाए, यद्यपि भगवान का ही सब कुछ है, फिर भी अपने भक्तों के लिए भगवान लीला करते हैं। जनार्दन शब्द का ये अर्थ है कि अपने भक्त बलि महाराज से वे याचना करेंगे, इतनी कृपा करेंगे। प्रकट अर्थ नहीं कर रहे हैं, इस छिपा हुआ अर्थ है। तो माता अदिति ने भी कहा कि तो जब प्रभु इतने महान हैं तो सब किसी दिन इनके दुख को कैसे समझेंगे, तो कौन दुख पहुंचाएगा, कौन सूचना देगा, कौन फोन करेगा या ईमेल भेजेगा। तब कश्यप जी कहते हैं सर्वभूत गुहावासम, उनको कहने की दूर वो दूर नहीं है, सभी जीवों के अंतःकरण में ही है, सबके हृदय में बसते हैं, उनको सब कुछ ज्ञात रहता है। ये मत समझो कि वो बड़े हैं, उनसे अप्रोच नहीं किया जा सकता, उनसे नहीं कुछ कहा जा सकता। सबसे निकटतम यदि कोई है तो वो है भगवान कृष्ण। इतना निकट कोई किसी का न बेटा है, न स्त्री है, न बाप है, न भाई है, कोई नहीं है। समय बहुत दूरी है ना, लेकिन भगवान तो बिल्कुल हृदय के कोर में, हृदय के गुहा में, गुहा कहते हैं गुफा को, अंतःकरण में रहते हैं। इतना निकट, भगवान जैसा निकट कोई हो ही नहीं सकता है। कभी कभी लोग कहते हैं भगवान की पूजा करने के लिए मार्फत चाहिए, पहले दूसरे को दो, ये दो, ये सब पाखंड है। वास्तव में भगवान को, भगवान के साथ संबंध जोड़ने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है या किसी वैष्णव की जरूरत होती है, लेकिन संबंध जुड़ने के बाद यह प्रतिक्रिया में आवश्यक नहीं है कि गुरु को बीच में डाला जाए, यह आवश्यक नहीं है। सर्वभूत गुहावास, हम सबके हृदय में ही हैं, सबसे निकटतम व्यक्ति हैं। तो यह सीखना चाहिए कि भगवान के पास पहुंचने कठिन है, वो ऑलरेडी वही पहुंचे हुए हैं, और हम नहीं भी बोलेंगे, बोलना नहीं भी आएगा, मांगना नहीं आएगा, पर प्रभु तो अंतःकरण के साक्षी हमारी इच्छा को जान जाएंगे, अपने आप बिना बताए जान जाते हैं। जैसे माता अदिति से वो कहेंगे, पयोव्रत के बाद जब प्रकट हुए तो भगवान कहते हैं कि देव मातर भवत्या में विज्ञातम चिरकांक्षितम, यदि माँ अदिति ने नहीं कहा कुछ भी, लेकिन भगवान कहते हैं कि हे देव माता, बहुत काल से तुम्हारे हृदय में जो इच्छा है उसको मैं जानता हूं। अपने आप कहते हैं विज्ञातम, मुझे ज्ञात है। क्या ज्ञात है? तुम्हारे अपने पुत्रों के विषय में जो इच्छा है वो मुझे ज्ञात है। तुम यही चाहते हो ना कि तुम्हारे पुत्र स्वर्ग के राजा बने, स्वर्ग में खेलें, और तुम ये भी चाहते हो कि असुर सब मारे जाएं, उनकी स्त्रियां रोएं, विलाप करें। स्पष्ट भगवान बोल रहे हैं। यद्यपि माता अदिति ने संकोच से कुछ कहा नहीं भगवान से, तो सर्वभूत गुहावास, भक्त के एक एक इच्छा को वो बिना कहे जानते हैं, बिना कहे जानते। ब्रह्मा जी ने भी देवताओं से कहा दशम स्कंध में, पुरैव पुंसाव धृतो धरा ज्वरो, हम लोगों के विज्ञापन के पहले ही, प्रार्थना के पहले ही परम पुरुष भगवान कृष्ण को पृथ्वी के दुख का पता है। पृथ्वी गई थी, रोई थी ब्रह्मा जी की सभा में, ब्रह्मा जी भगवान शिव इंद्र आदि को लेकर के क्षीर समुद्र के तट पर गए, तो समाधि में ब्रह्मा जी से भगवान ने कहा कि आप लोग इतने रो गा रहे हैं, हमको पहले से सब पता है। पहले से पता है, और मैं अवतार लूंगा वसुदेव जी के घर में, वसुदेव जी की पत्नी देवकी माँ के गर्भ से मैं अवतार लूंगा, आप लोग चिंता मत कीजिए, और पृथ्वी का सारा भार दूर कर दूंगा, ये भगवान ने कहा। तो सर्वभूत गुहावासम इस अर्थ को दे रहा है कि भगवान से कुछ कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान कभी कभी ये कहलवाना चाहते भी नहीं है कि भक्त कोई कुछ ऐसा कह पावे, पर वो जानते हैं सब कुछ।
और उसका कारण ये तो जानते हैं। दूसरी बात ये है कि वासुदेव है, वासुदेव का अर्थ होता है जो विशुद्ध सत्व में प्रकट होते हैं, विशुद्ध सत्व में प्रकट होते हैं। तो माता अद्दी ने कहा तो विशुद्ध सत्व में प्रकट होते हैं, वसुदेव शब्द का अर्थ है विशुद्ध सत्व, दिव्य स्थिति, उसमें प्रकट होते हैं भगवान, इसलिए उनको वासुदेव कहते हैं। परंतु यहां पर कश्यप जी यह कह रहे हैं कि वही विश्व के रचयिता हैं, वही पालक हैं, तो भक्त का पालन क्यों नहीं करेंगे? तुम यही चाहती हो ना कि तुम्हारे पुत्रों का पालन हो, वो धनी रहे, उनका जस फैले, बलवान रहे, तो प्रभु सब करेंगे। और दूसरी बात है कि वे स्वभाव से ही समस्त जीवों के हितैषी हैं, स्वभाव से। जगत गुरु, गुरु का अर्थ होता है हित करता, जो हित करे वो गुरु है, जो अपने अधीनस्थ सबॉर्डिनेट शिष्य को, पुत्र को या जनता को जो हित, जनता का हित करे, अपने आप उसको गुरु कहा जाता है, अपने आप उनके हित की चिंता करता है, हित की व्यवस्था करता है। तो भगवान तो केवल दो चार या दस बीस हजार के गुरु नहीं है, समस्त जीवों के हितैषी, सुहृदम सर्वभूतानां। भगवान गीता में कहते हैं कि मैं समस्त जीवों का सुहृद हूं। सुहृद का अर्थ होता है जो बिना कारण के हित करे, भलाई करे, उसको सुहृद कहते हैं। तो भगवान केवल मनुष्यों के ही नहीं, देवताओं के ही नहीं, चर अचर समस्त जीवों के हितैषी, ये भगवान का स्वभाव है। तो जो व्यक्ति स्वभाव से ही चर अचर देवता दानव सबका हितैषी है, तो वह अपने भक्त का हित क्यों नहीं करेगा? विचार करो, तो भगवान का ही स्वभाव है। मनुष्यों में ये बातें बहुत कम आती हैं। कुछ लोग संघ बनाते हैं, कहते हैं, तो कहते हैं मानव सेवा, मानव सेवा पर विचार करते, मनुष्य की सेवा होनी चाहिए, सारी गायों को काट करके इनके पेट में डाल देना चाहिए, इसे इनका हित होगा। गौओं के हित पर कोई विचार नहीं है। दूसरे जीव कितने दुखी हैं इस जगत में, भगवान की इस दुनिया में दूसरे जीव किस तरह गुजारा कर रहे हैं, किस तरह कष्ट से उनको भोजन नहीं मिलता है, परिश्रम ज्यादा लिया जाता है, और अंत में बूचर में खाने में, कसाई खानों में उनको किस तरह काट दिया जाता है। ये मनुष्य, जो मनुष्य की सेवा की बात करते हैं, इन गधों की दृष्टि ही नहीं है कि उन जीवों में भी भगवान है और वे जीव ही सुख दुख का अनुभव करते हैं। अपने को बहुत पढ़ा लिखा, एडवांस समझते हैं, कहते हैं इनमें एनिमल्स हैव नो सोल, ये कहते हैं एनिमल्स हैव नो सोल, पशुओं में आत्मा नहीं है, साफ बोलते हैं मांस खाने वाले लोग। मनुष्य का हित करो, मनुष्य का हित करो, मनुष्य का हित करो, मनुष्य को भी नहीं समझ पाते हैं। और जो व्यक्ति यह कह सकता है कि पशुओं में आत्मा नहीं है, वास्तव में वो गधा है, पत्थर का हृदय है। गधा भी नहीं है, गधा में भी तो कुछ सेंस होगा वास्तव में, उसको क्या कहा जाए, उस शैतान को। कहता है पशुओं में आत्मा नहीं है, जीव नहीं है, जीव का लक्षण जानते ही नहीं है कि क्या है, जीव का कौन सा ऐसा लक्षण है जो पशु में नहीं पाया जाता है, जरा पूछिए उन लोगों से, धड़ल्ले कह देते हैं एनिमल साहब नो सो, पशुओं में आत्मा नहीं है। वे इतने जीव भरे पड़े हैं इस विश्व में, पशु हैं अनेक प्रकार के, मछलियां हैं, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, सबके हित की चिंता करने वाला, सबका हित करने वाला भगवान कृष्ण, इसलिए उनको जगत गुरु कहते हैं। सबको ज्ञान देते हैं, सबको समझ देते हैं, सबका पालन पोषण करते हैं, हित करते हैं, इसलिए उनको गुरु कहते हैं। तो भगवान कृष्ण जगत गुरु हैं, ऐसे व्यक्ति का भजन करना चाहिए, ऐसे भगवान की उपासना करनी चाहिए। तो सबके बाद अंतिम विशेषण भगवान का लगा रहे हैं भगवंतम, भग का अर्थ है छह ऐश्वर्य, पूर्ण धन, पूर्ण बल, पूर्ण बल, पूर्ण वैराग्य, पूर्ण यश जिसमें हो, पूर्ण सुंदरता, वो है भगवान, जो सब तरह से सभी चीज से पूर्ण है, उसी की शरण लेनी चाहिए। और ये दरिद्र देवताओं की शरण लेकर करेंगे क्या, अभी क्या शरण लेंगे, उनका स्थान छीन लिया गया है, वो दर दर मारे मारे फिर रहे हैं, उनके माता पिता रो रहे हैं, उनकी मां रो रही है, देवताओं की मां रो रही है। अंत में कौन काम आया? विष्णु काम आया ना, भगवान काम आए। तो जब इतिहास सुनते हैं, भागवत सुनते हैं, फिर भी दूसरे की शरण लेते, ये बहुत बड़ा अज्ञान है। भागवत में देवता लोग स्वयं कहे हैं भगवान से कि हे प्रभु, जो कोई व्यक्ति आपकी शरण छोड़ करके किसी दूसरे की शरण लेता है, देवताओं की शरण लेता है, तो वह कुत्ते की पूंछ पकड़कर समुद्र पार करना चाहता है। ये लोग खुद कहे हैं छठे स्कंध में, स्वलांगु ने नाति तितर्त सिंधु, स्व मने कुत्ता, लांगुल मने पूंछ। किसी को समुद्र पार करना हो और कोई व्यक्ति देखे कि कुत्ता नहा रहा है किनारे, तो वो सोचे कि इसकी पूंछ पकड़ करके इस सागर को पार कर जाएंगे, तो कुत्ता कितना दूर जाएगा सोचिए, दो चार मीटर भी नहीं जा सकता, ये पूंछ पकड़ेगा तो और डूब जाएगा। वो जो स्वयं डूबेगा वो दूसरे को क्या खींचकर पार करेगा? क्यों देवताओं की शरण ली जाए, क्यों किसी मनुष्य की शरण ली जाए? क्या है उनमें दम? कुछ भी दम नहीं है। इसीलिए भगवान के सब विशेषण कश्यप जी दे रहे हैं, उपतिष्ठस्व पुरुषम भगवंतम जनार्दनम सर्वभूत गुहावासम वासुदेवम जगत गुरु। बड़ा से बड़ा व्यक्ति संसार में कुछ हो जाता है उसके स्वजन को, तो कहता है तो हमें तो पता ही नहीं चला, तो तुम सर्वभूत गुहावास थोड़े हो, तुमको कैसे पता होगा? कोई फोन करेगा बताएगा तब पता होगा, तब तक तो दुर्घटना हो जाती है। कोई बहुत बड़ी घटना जब हो जाती है, रेल दुर्घटना या घटना, तब मिनिस्टर लोग जुटते हैं और कहते हैं तो ईश्वर की इच्छा, तो अब क्या करेंगे? घटना हो जाती इसके बाद पता चलता है। अगर अंतर्जानी होते, दूसरे जीवों के हृदय में प्रवेश किए होते, टेररिस्ट लोगों के हृदय में भी होते, तो पता लगा लेते ना कि ये एक्सीडेंट करेगा, इधर विनाश करेगा, तो पहले से सारा उपाय कर लेते। तो ज्ञान नहीं, क्या कोई कर सकता है? एकमात्र भगवान ही सब तरह से परिपूर्ण है, अतः प्रिय तुम उनकी शरण लो। ये समझा रहे हैं, सविधा स्वति ते का मान हरिर दीनानुकंपना, भक्तों का दुख हरने में उनकी रुचि रहती है, और दीनानुकंपना दीनों पर अनुकंपा करते हैं, दया करते हैं। और किसी व्यक्ति से बहुत बड़ा पाप, बहुत बड़ा अपराध भी हुआ है, तो अपने भक्त के अपराध को वे सह लेते हैं, उसे दंडित नहीं करते हैं, उसे शुद्ध कर देते हैं। ये भगवान का स्वभाव है। अगर तुमसे कोई गलती भी होगी पूजा में, तो वे ध्यान नहीं देंगे। भगवान की पूजा के विषय में स्वयं ही कहते हैं कि अमोघा भगवत भक्ति, भगवान विष्णु की भक्ति अमोघ होती है। अमोघ का अर्थ है अव्यर्थ, व्यर्थ कभी नहीं होती है। यहां तक उसमें त्रुटि भी बहुत रहे तब भी वो पूरा फल देती है, परंतु देवताओं की भक्ति अगर पूरा पूरा किया जाए बहुत सावधानी के साथ, फिर भी बहुत कम फल मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में लिखा है कि यदि आप देवताओं को बेल फल के बराबर देंगे कुछ बेल फल, तब वे लोग सरसों के बराबर आपको देंगे। सरसों इतना छोटा होता है, और वे कहते जाही जल जाचो कहे अमीय पियाऊ सो। मैं जिस व्यक्ति से जल मांगता हूं, किसी देवी देवता से, किसी आदमी से, तो वो कहता है कि हमको अमृत ला करके दो तब पानी दूंगा। आप बताइए, तो जो अमृत दे सकता है तो पानी क्यों मांगेगा? पहले हमको ये चीज दो, ऐसा करो, तब हम तुम्हारा काम करेंगे। प्राय देवी देवता का भी यही हिसाब है। देहात में तो लोग मनौती करते हैं, हे बाबा हे देवी, आपको हम इतना चीज अर्पण करेंगे, पांच शेर मिठाई खिलाएंगे, हमारा ये काम है उसको कर दीजिए। मैं यह नहीं कहता हूं कि वो मिठाई पाकर को काम करते हैं, लेकिन मनुष्य भी देवताओं के स्वभाव को समझता है कि कुछ लेगा तब करेगा, ऐसे नहीं करेगा। कोई देवता ऐसा नहीं है जो तुलसी का पत्ता लेकर के और पूरा साम्राज्य दे दे और तीन मुट्ठी चिवड़ा खा करके पूरा द्वारका जैसा धन दे दे, ऐसा कोई नहीं। ये सबको चाहिए पहले, तब कुछ सुनते हैं। और मनुष्य तो बहुत अधिक चाहते हैं तब थोड़ा सा काम करते हैं, देवता तो फिर भी थोड़ा कर देते हैं, लेकिन मनुष्य तो वो तो पैसा लेकर कभी हजम कर जाते हैं और कहता है ऐसा हो गया, ये हो गया, ये हो गया, फिर हो गया, ये हो गया, इसलिए तुम्हारा काम नहीं हुआ। अरे काम जो करेगा जिसमें शक्ति है उसी वही करेगा ना, जिसके पास धन है, बल है, बुद्धि है, वही करेगा ना। इसीलिए भगवान के सब विशेषण दिए गए, दीनानुकंपना और दीनहीन व्यक्ति के प्रति भगवान के हृदय में बहुत अनुकंपा होती है। तो भगवान की भक्ति जो है अव्यर्थ है, वो निश्चित फल देती है, वैगुण्य रहने पर भी, उसमें कोई त्रुटि भी रहे, दोष भी रहे, तब भी वो ठीक है। और देवतांतर भजन, दूसरे देवताओं का या मनुष्यों का, भूत प्रेत का जो भजन है, वो तो उसमें कमर टूट जाती है, कुछ मिलता नहीं, कुछ मिलेगा नहीं, पूरा सांगोपांग कीजिए तब भी नहीं मिलता। मेरे यहां कहावत है कि घी के लड्डू टेढ़ो वाला, अगर घी में लड्डू बनाया गया है गोला गोला, और चाहे मोतीचूर हो चाहे कोई हो, मान लीजिए वो टेढ़ा भी हो गया तब भी बहुत अच्छा है। भगवान की भक्ति ऐसी है कि उसमें कोई त्रुटि भी हो जाए, कोई महामंत्र का उच्चारण कर रहा है उसे करने नहीं आ रहा है। एक भक्त थे, उनको महामंत्र याद कराते कराते हजारों लोग थक गए, वो याद हुआ ही नहीं उनको। हरे कृष्ण कहते थे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, तो जब कृष्ण कृष्ण कहना होता था तो वो बिल्कुल नहीं समझते थे, केवल हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, और हरे कृष्ण एक कह करके एक एक दाना खसकाते थे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, इस तरह से 108 पर एक माला हुआ। तो क्या कृष्ण ये थोड़े विचार किए होंगे कि इसको नाम उच्चारण करने नहीं आता है? अरे जब मरा मरा कह करके वाल्मीकि जी इतने बड़े भक्त हो गए, उल्टा नाम जगत जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि जी में ब्रह्मा जी के समान शक्ति आ गई। वो रत्नाकर नाम के डाकू थे, नारद जी ने उनको कृपा करके कहा कि तुम राम राम रटो, राम राम रटो, राम 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 रात दिन रटो। तो नारद जी चले गए तो डाकू भूल गया वो कि क्या जपना है। तो वो उल्टा जपने लगा, मारा था, मरे हुए लोगों को देखा था, तो वही याद है कि ऐसा कुछ कहा था, मय और राम राख कहा था, वो मरा 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 जप रहा था, उल्टा नाम जपत जगदाना। अब मरा मराम राम राम आने ही लगा, इतना सब था, इतना लेकिन निष्ठा से जपा, इतना प्रेम से जपा, इतना तेज बढ़ा कि दूसरे ब्रह्मा जी के समान हो गया वाल्मीकि। उन्होंने जो रामायण लिखा वो लाखों वर्ष पहले लिख दिया, भगवान राम का अवतार बाद में हुआ, बाद में होने वाले भविष्य में होने वाली लीला को भूतकालीन लीला जैसा उन्होंने लिख दिया, ये उनका प्रताप है। ये सारा संवाद जब रामायण में पढ़ेंगे तो कोई नहीं समझ सकता है कि ये पहले लिख दिया गया होगा, लेकिन पहले लिखा गया था। ये भगवान का नाम जपने से ऐसी दिव्य शक्ति प्राप्त हो गई। तो भगवान की भक्ति ऐसी है, इसमें विगुण हो दोष भी हो फिर भी यह पूर्ण फल देती है। जैसे अजामिल नाम उच्चारण किया, नारायण आया, अपने पुत्र का नाम लिया कि हे नारायण आओ, लेकिन वह नारायण शब्द, चूंकि भगवान का नाम भगवान का स्वरूप है, तो वह नारायण के वह अजामिल के मनोभाव को या इस सब को पर कुछ भी विचार नहीं किया, निहित कर ही दिया। इसीलिए भगवान से जोड़ना चाहिए अपने को। दोष रहेंगे, त्रुटियां रहेंगी, फिर भी जीव का कल्याण हो जाएगा, बाद में मुक्त होगा संसार से और इस जीवन में भी धन धन की प्राप्ति करेगा। इसको दीनानुकंपन कहा गया। और नेतरा, भगवान की भक्ति अमोघ है, लेकिन इतरा भक्ति अमोघ नहीं है। इतरा मतलब अन्य देवों की उपासना, अमोघा भगवत भक्ति। नेतरा नेतरेति मतिर ममा, कश्यप जी कहते हैं मेरा मत है, मत मैंने मत, मेरा मत है, अपनी पत्नी से कह रहे हैं कि भगवान विष्णु की भक्ति अमोघ है, पर इतरा भक्ति अन्य किसी की भी भक्ति अमोघ नहीं है, बल्कि मोघ है, बेकार है, वो ये कह रहे हैं। उनके शब्दों में यही बात छिपी है, न इतरा, इतरा मतलब विष्णु भक्ति भिन्ना, विष्णु की भक्ति से भिन्न अन्य की भक्ति किया जाए तो वह अमोघ नहीं है, वो मोघ है, व्यर्थ है, कोई फल नहीं है। इसलिए भगवान की भक्ति करो। इस पर माता अदिति अपने निश्चय को सामने करके, श्रद्धा को प्रकट करके कहती है, अदिति रुवाच, केनाहम विधिना ब्रह्मन् उपस्था से जगतपतिम जथा मे सत्य संकल्पो विदध्यात् स मनोरथम। हे ब्रह्मन्, हे वेदवेत्ता, आपकी शक्ति है, आप सर्वज्ञ हैं, तो आप बताइए मैं किस विधि से जगतपति भगवान विष्णु की आराधना करूं, विधि बताइए, पूजा कैसे करूं। जगतपति, पति का अर्थ है पालन करने वाला, भगवान समस्त जीवों का पालन करते हैं। वो समझती थी भगवान विष्णु की महिमा को, जानती थी, पति के थोड़ा कहने से समझ गई, तो तैयार हो गई। उसने कोई बहस नहीं किया कि और दूसरे की भक्ति किया जाए तो क्या हर्ज है। किसी किसी स्त्री की आदत होती है, अगर वो कहेंगे अब हरे कृष्ण जपो तो कहती है मैं बृहस्पति बार का व्रत करती हूं। ऐसे टांग नहीं अड़ाना चाहिए। यदि कोई वैष्णव है तो आंख बंद करके उसके पीछे चलना चाहिए। नहीं, आपको जो अच्छा लगता है आप वो कीजिए, मैं मंगल व्रत करती हूं, मंगलवार का तो ये व्रत करती, ये दुनिया के व्रत में आग लगा देना चाहिए, खत्म, एकादशी व्रत करना चाहिए और जन्माष्टमी ये सब व्रत करना चाहिए, भगवान का व्रत करना चाहिए, जो भी व्रत है भगवान के। तो पूछ रही है माता अदिति कि मैं किस विधि से भगवान की आराधना करूं, क्या साधन है, क्या उपाय बताइए। वो विधि बताइए जिससे कि सत्य संकल्प भगवान मेरे मनोरथ को पूरा कर सके, हमारी इच्छा को पूरा कर सके भगवान। वो विधि बताए किस विधि से हम पर खुश होंगे और हमारा मनोरथ पूरा करेंगे, मतलब हमारे पुत्रों को इंद्र आदि को राज्य मिलेगा स्वर्ग का, भगवान ऐसा करेंगे। हरे कृष्ण, तो किस विधि से। और दूसरा प्रश्न माता अदिति कर रही है कि पति देव, मैं अपने पुत्रों के साथ बहुत दुख में हूं, बहुत दुख में हूं, इसलिए वह विधि बताइए कि भगवान शीघ्र मेरा मनोरथ पूरा कर सके। मनोरथ पूरा करें तो ये नहीं कि लगा दे दो चार साल या कुछ काल लगा दे बाद में देखा जाए, नहीं, हमको शीघ्र चाहिए। तो देखिए श्लोक किस तरह बोल रही है, आदिश त्वम द्विज श्रेष्ठ विधिम तदुपधावनम आशु तुष्यति मे देव सीदंत्या सह पुत्र कही, पुत्र कई सह सिदंत्या, मैं पुत्रों के साथ बहुत दुख भोग रही हूं, बहुत दुख भोग रही हूं, मेरे पुत्र दुखी हैं, मैं दुखी हूं, तो पुत्रों के साथ मैं बहुत दुख उठा रही हूं, इसलिए हे द्विज श्रेष्ठ, हे ब्राह्मणों में सबसे श्रेष्ठ, आप हमको वह विधि बताइए आशु तुष्यति मे देव, जिस विधि से भगवान हम पर बहुत जल्दी खुश हो जाए, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाए और हम पर कृपा करें, हमारा दुख दूर करें भगवान, जल्दी प्रसन्न होने वाला। मतलब आप विचार कीजिए कि हम ज्यादा दिन नहीं कर पाएंगे, इतना मैं दुखी हूं कि थोड़े दिन भक्ति करूंगी, थोड़े दिन ऐसा साधन बताइए कि जल्दी भगवान को प्रसन्न कर। देखिए अब कश्यप जी उपाय बता रहे हैं, माता अदिति ने 12-13 दिन का व्रत किया और इसी से भगवान प्रकट हो गए। इतना शीघ्र कौन सा ऐसा साधन है जो भगवान को प्रकट कर सकता है, ये पयोव्रत की विधि बता रहे हैं। इसी के वर्णन में थोड़ी सी देर लगेगी, इसीलिए मैं पहले ही कह दिया कि 9 बज सकता है। ये समझना चाहिए कितनी सुंदर विधि है, 12 दिन में 13 दिन में भगवान को प्रकट कर दिया इस साधन ने। भक्ति में बहुत बड़ा बल है, भक्ति से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। इस स्त्री में, देव माता अदिति में बहुत श्रद्धा है भगवान के प्रति, और अपने पति के वचनों में पूर्ण विश्वास है, भगवान पर विश्वास है, जरूर वे मेरा दुख देख करके प्रकट होंगे, उपाय करेंगे। तब कश्यप जी उपाय बता रहे हैं, एतन में भगवान पृष्ठ प्रजा कामस्य पद्मज जदाहते प्रवक्ष्यामि व्रतम केशव तोषणम। हे प्रिय, मैंने पहले भगवान पद्मज से, मतलब भगवान ब्रह्मा जी से एक बात पूछा था। मुझे पुत्र की कामना थी, पुत्र प्राप्त करने की कामना थी, तो मैंने ब्रह्मा जी से एक बार पूछा, भगवान पद्मज, कितना आदर है ब्रह्मा जी के प्रति, उनको भगवान पद्मज कह रहे। पद्म का अर्थ है कमल और ज मैंने जन्म, ब्रह्मा जी कमल से जन्म लिए हैं, उनको पद्मज कहते हैं, पद्म से जिसका जन्म हुआ, भगवान पद्मज बहुत आदर है। सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ब्रह्मा जी से मैंने पूछा, अपने दादा से पूछा, अपने पितामह से पूछा, प्रजा कामस्य, मुझे पुत्रों की इच्छा थी, पुत्र प्राप्त करने की इच्छा थी, तो मैंने ब्रह्मा जी से पूछा कि क्या उपाय करने से पुत्र प्राप्त होंगे अच्छे अच्छे। तो भगवान ब्रह्मा जी ने एक विधि बताई, जदा है जो कहा ते प्रवक्ष्यामि, तो उस तुभ्यम प्रवक्ष्यामि, मैं तुमसे वो बताने जा रहा हूं। व्रत, एक व्रत, केशव तोषणम, जो भगवान श्री कृष्ण को, विष्णु को प्रसन्न कर देता है, उनको संतुष्ट करने वाला व्रत। क का अर्थ है ब्रह्मा जी और ईश का अर्थ होता है शिव जी। प्राय भगवान शिव को ईश्वर कहते भी हैं, कहीं भी नाम है तो उनमें ईश्वर जुड़ा हुआ है, नागेश्वर महादेव, यह महादेव, यह महादेव, ईश्वर शब्द जुड़ा है। तो ईश शब्द प्रचलित है भगवान शिव के लिए, और क का अर्थ है ब्रह्मा जी। तो क ब्रह्मा, ईश शिव, इन दोनों को व का अर्थ है सुखम ददाति, व का अर्थ है सुख, जो दोनों को सुख देते हैं, ब्रह्मा जी को और शिव जी को भी सुख देते हैं, दोनों जिनके दास हैं, ये भाव है। ब्रह्मा और शिव को भी सुख देने वाले, या वह का अर्थ अपने वश में रखने वाले केशव को, भगवान विष्णु को, यह व्रत संतुष्ट करता है। इसका अर्थ है कि सबसे बड़ा व्रत है जो ब्रह्मा और शिव के भी स्वामी भगवान को संतुष्ट कर देता है, केशव तोषणम व्रत, वो मैं तुमसे बता रहा हूं। तो वचन की दृढ़ता के लिए, इसके सत्य के प्रतिपादन के लिए वे संप्रदाय परंपरा भी बता रहे हैं कि हमको ब्रह्मा जी ने कहा है। आजकल के लोग जब प्रवचन करते हैं तो सीधे कह देते हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा रियलाइजेशन है। अरे तुम्हारा रियलाइजेशन क्या कीमत रखता है, तुम्हारा रियलाइजेशन। यहां कश्यप जी बोल रहे हैं, देवताओं के पिता, लेकिन कह रहे हैं कि हमको भगवान ब्रह्मा जी ने ये बताया। ब्रह्मा जी प्रमाण है, क्योंकि भगवान के डायरेक्ट पुत्र हैं, भगवान के नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और कमल से श्री ब्रह्मा जी प्रकट हुए, जन्म लिए। यह भी परंपरा बता रहे, तो ब्रह्मा जी को कौन बताया होगा, तो भगवान ने बताया होगा, अपने आप सिद्ध हुआ कि ये है संप्रदाय। तो ब्रह्मा जी ने बताया कि मैं तुमसे केशव को संतुष्ट करने वाला व्रत बता रहा हूं। ये कश्यप जी कह रहे हैं कि यह व्रत केशव को, स्वयं भगवान को संतुष्ट करने वाला है, वो व्रत करना है। फाल्गुनश्यामले पक्षे द्वादशाहम पयो व्रत, फागुन के शुक्ल पक्ष में जो अभी आएगा, कोई करना चाहे तो उसको प्रॉपर टाइम मिल जाएगा। फागुन महीने के शुक्ल पक्ष में द्वादशाहम 12 दिन का एक व्रत है, और व्रती क्या करता है, पयो व्रत, दूध पी करके इस व्रत को करता है। 12 दिन तक और कोई भोजन नहीं करेगा, खीर खा सकता है, दूध पी करके रहेगा, दूध पी करके व्रत किया जाता है। बहुत अच्छा चीज है दूध पी करके किया जाए, ऐसा नहीं कि शराब पी करके किया जाए। कई लोग तो ऐसे कर ही नहीं पाएंगे। देवी देवता की भी जो आराधना होती है तो उसमें भी शुद्ध आहार करना पहला नियम होता है, पहला नियम होता है। लेकिन लोग झूठ मूठ कैसे बना लिए हैं बहाना, ये खाओ ये पियो। हमने सुना है कि नवरात्र में देवी जी की आराधना में भी लोग फल खाते हैं, और महाशराबी भी 9 दिन शराब नहीं पीता है, ऐसा है ना? तो दूध पीने के लिए कह रहे, दूध पीने से सात्विक वृत्ति रहती है, दूध पी करके 12 दिन का व्रत करना है। और चेत अरविंदाक्षम, ये व्रत क्या है कि अरविंदाक्ष का पूजन करना है, कमल नयन भगवान का पूजन करना है 12 दिन। आहार दूध, पय, पय का अर्थ दूध, तो पय पी करके दूध किया जाता है, इसीलिए इसका नाम है पयो व्रत, और 12 दिन का व्रत है। तो ये व्रत क्या है तो उसको कश्यप जी और प्रकट कर रहे हैं कि ये व्रत है अरविंदाक्ष का पूजन। भगवान का नाम ही है कमल नयन, कमल लोचन, उनकी आंखें बहुत सुंदर हैं, कमल के समान, कमल से भी अधिक सुंदर है, तो सब जगह यही प्रसिद्ध है। कई सभा होती है देवताओं की तो कोई पूछता है कि और कमल नयन आए थे कि नहीं, कोई विष्णु या हरि कृष्ण लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है कमल नयन आते हैं कि नहीं, मतलब बहुत सुंदर आंख वाले भगवान विष्णु आते हैं कि नहीं, भगवान की आंखें बहुत सुंदर है इसीलिए उनको कमलाक्ष कहते हैं, कमल नयन। और देवताओं की आंखें बहुत सुंदर नहीं है, भागवत में तो लिखा गया है शिव जी का खास ससुर कह रहा है शिव जी को कि इसकी आंख बानर की आंख जैसी है, मरकट लोचन, मैंने अपनी लड़की का विवाह कर दिया, मैं बहुत धोखा में पड़ गया। भले वो दोष दृष्टि करके कह रहा है लेकिन कुछ न कुछ सच्चाई थी, भगवान इतना सुंदर है तो सुंदर भगवान का भजन करना चाहिए ना। जो विकट भेष धारण किए हुए, गले में सांप लगाए हुए, कौन भजन करेगा, डर डर लगता है। एक सच्ची घटना बताते हैं लोग कि जिस समय भगवान गणपति जी दूध पी रहे थे, वो घटना कई साल पहले हुई थी, आप लोगों ने सुना होगा, हमने भी देखा था, सही बात है। दूध पी रहे थे तो एक जगह भगवान शिव की मूर्ति थी और बगल में गणेश जी थे, तो गणेश जी को दूध पीने के लिए एक व्यक्ति ले जा रहा था, तब तक तो भगवान शिव के गले में जो सांप था पत्थर का बना हुआ, वो लपक करके दूध पी गए। अब पता नहीं आते सयोक्ति करते हैं, सांप दूध पीते हैं तो भगवान शिव के गले में रखा हुआ सांप उस दूध को पी गए। ये डायरेक्ट एक व्यक्ति ने हमको कहा कि हमने पास तुमने देखा, हमने पूछा कि तुमने देखा, एकदम आंख से देखे हैं, आंख से देखे। जो भी बात हो, हमारे कहने का मतलब है कि ऐसे देवता जो गले में सांप लगाए रखें और मुंडमाल मनुष्यों का कटा हुआ मस्तक फूल के बदले वही लगा, वो तो देख करके भाग जाएंगे सब। जब भगवान शिव बारात गए हिमाचल तो लड़के देखने आए खुशी से गांव से, चले दुल्हा को देखेंगे, दुल्हा को देखेंगे, और जब दुल्हा को देखे बूढ़े बैल पर सवार और इतना भयावह, तो लड़के रोने लगे, भाग चले घर। उनकी माताएं समझाने लगे, वो तो फफक फफक कर रो रहे थे, अरे बाप रे बाप, दुल्हा नहीं आया, दुल्हा नहीं आया। तो पूछती थी माताएं कौन आया, तो जमराज की सेना आई है जमराज की सेना आई है। तो शिव जी स्वयं भी भगवान के भक्त हैं, वैष्णवों में सबसे श्रेष्ठ हैं, और वही राख ओख लगाकर गुजारा करते हैं, भोग नहीं भोगते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, पर वो भजनीय मतलब इष्ट देव नहीं है, वो भक्त हैं। भक्त भाव से उनकी सेवा करनी चाहिए, और इष्ट समस्त जगत के, यहां तक शिव जी के भी, ब्रह्मा जी के भी, वो तो विष्णु हैं, भगवान हैं जिन्होंने इस जगत को पैदा किया। तो यहां पर कश्यप जी कह रहे हैं कि इस द्वादश दिन में पयोव्रत में दूध पी करके कमलाक्ष का, पुष्कराक्ष का पूजन करना है, भजन करना है, और चेत अरविंदाक्ष, अरविंद मतलब कमल, अक्ष मतलब आंख, अरविंदाक्ष कमल नयन भगवान का पूजन करना है। कैसे पूजन करना है? भक्त्य परमयान्वित, तो परम भक्ति के साथ भगवान की पूजा करनी है, श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ, प्रेम से पूजा करनी है। ऐसा नहीं केवल ड्यूटी पूरा करने के लिए आरती घुमा दिया, सिर्फ ड्यूटी पूरा करने के लिए नहीं, हृदय से अनुराग से पूजन करना चाहिए। भगवान को क्या क्या खिलाना है, क्या क्या पुष्प अर्पित करना है, ऐसे हृदय के राग के साथ प्रेम से भगवान की अर्चना करनी है। और विधि बता रहे, सीनी वाल्या मृदा लिप्य स्नायत क्रोण विदीर्णया यदि लभ्ये तव श्रुतस एतम मंत्र उदीरयेत। सीनी वाली मतलब अमावस्या के दिन ये व्रत कब चालू करना है? प्रतिपद एकम से चालू करना है, शुक्ल एकम से जो पहली तिथि पड़ती है, लेकिन अमावस्या के दिन एक काम करना है, सीनी वाली अमावस्या को कहते हैं, अमावस्या के दिन ये व्रत करने वाले को चाहिए कि वह देह में मिट्टी लगाकर स्नान करे, साबुन वबुन नहीं, साबुन तो देह को अशुद्ध कर देता है, मिट्टी बहुत शुद्ध चीज है। और यदि लभ्ये तो, यदि क्रोर विदीर्ण आए, वन्य वाराह के द्वारा उत्खात मिट्टी हो तो बहुत अच्छा, वन में जो वाराह रहते हैं तो उनके पैर से या जैसे तैसे उखाड़ी हुई मिट्टी को, उनके दांत से उखाड़ी हुई मिट्टी को लेकर के उससे स्नान करें, यदि प्राप्त हो तब। जानते हैं कश्यप जी की ये प्राप्त जल्दी नहीं होगा, इसलिए यदि शब्द लगाए, यदि लभ्ये तक, यदि प्राप्त हो सके तो वन में रहने वाले वाराह के पैर से उखाड़ी हुई मिट्टी को, दांत से उखाड़ी हुई मिट्टी को लगा करके स्नान करें। कहां स्नान करे? स्रोतसी, तालाब में नहीं, बहते हुए पानी में, स्रोत में स्नान करे, मतलब नदी में, स्रोत में स्नान करे। तो एक व्यक्ति ने हमको एक बार कहा ये सुन करके, तो नल में भी तो जल बहता ही रहता है, इसे नहा लेना चाहिए। और ठीक है, ये भी स्रोत है लेकिन कुछ देर के लिए टंकी में ये तालाब बन जाता है। जो भी हो, यदि नदी सुलभ है तो नदी में स्नान करें, नहीं तो बहुत साफ पानी में स्नान करें, कहने का आशय है स्वच्छ जल में स्नान करें। और स्नान करते समय, मिट्टी लगाते समय यह मंत्र बोले, मिट्टी लगाते समय एतन मंत्रम उदीरयेत, इस मंत्र को उच्चारण करें, तम देव्यादि वराहेण रसाया स्थानमिच्छता उद्धितासी नमस्तुभ्यम पापमानम में प्रणाशय। हे देवी, आदि वराह ने, श्री भगवान ने समस्त जीवों के वास स्थान की इच्छा से तुम्हारा रसातल से उद्धार किया था। उद्धितासी, भगवान तुमको दांतों पर लेकर के तुमको आए थे, नमस्तुभ्यम, मैं तुमको प्रणाम करता हूँ, पापमानम में प्रणाशय, मेरे पाप को नष्ट कर दो देवी। मां पृथ्वी से प्रार्थना हो रही, उस मिट्टी को लगा करके आदि बराह भगवान ने समस्त जीवों के बसने के लिए इस पृथ्वी का उद्धार किया था, क्योंकि पृथ्वी पर ही सब रहते हैं, स्थानम इच्छता, तो भगवान ने तुम्हारा उद्धार किया था। हे देवी, मैं तुमको प्रणाम करता हूं, मेरे पापों को नष्ट करो, इस मंत्र को बोले स्नान करते समय। स्नान करते समय अगर केवल जल से स्नान किया जाए, कुछ बोला ना जाए, तो शरीर पवित्र नहीं होता है। इसलिए स्नान करते समय सीताराम सीताराम, हरे कृष्ण या हर हर महादेव, जय जय गंगे, ये सब कहना चाहिए। भले आदमी नल पर स्नान कर रहा है लेकिन वहां भी गंगा जी का ही नाम बोलना चाहिए, जय गंगे हरे कृष्ण चुपचाप स्नान कर लेना। ये तो पशु ऐसा करते हैं, मंत्र बोलते हुए स्नान करना चाहिए। और कोई मंत्र याद नहीं है तो महामंत्र तो है ही, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, तो इस मंत्र को बोलकर स्नान करना चाहिए। निवर्तितात्म नियमो देवमर चेत समाहित, और सारा नियम पूरा करके स्नान करके शुद्ध होकर के दांत धोकर के शौचादि होकर और स्नान करे, इसके पहले शौचादि क्रियाओं से निवृत्त हो जाए, मुंह धोवे अच्छा से और स्नान करे, स्नान के बाद तिलक करे, 12 तिलक शरीर पर करे, जिस तिलक को वैष्णव लोग सब जानते हैं, तो इस तरह से शुद्ध होकर के समाहित चित से एकाग्र चित्त होकर के और तब भगवान की पूजा चालू करे। एकाग्र चित्त का मतलब होता है कहीं दूसरे तरफ चित्त न करे, समाहित। 12 दिन के लिए फोन को बिल्कुल बंद करके रख दे। आज के युग में तो सबसे बुद्धि को अनेकाग्र करने वाली वस्तु यही है। बिल्कुल कोई बातचीत नहीं, कोई काम धंधा नहीं, 12 दिन बहुत ज्यादा नहीं है। 12 दिन वास्तव में जितने बड़े फल की प्राप्ति होगी उस हिसाब से बहुत कम परिश्रम है इसमें। तो समाहित होकर के किसी काम में न लगे। अगर पत्नी कर रही है तो वह कुछ भी नहीं करे पूजा के अलावा, पति सब सामान जुटाएगा या पुत्र है कोई तो जुटाएगा। खास करके जिस स्त्री को पुत्र नहीं हो रहा है अगर वह यह व्रत करे तो उसे पुत्र प्राप्त हो ही जाता है, ये देखा गया है। हमने एक बार अपने गांव में ही एक व्यक्ति से करा दिया ये व्रत। मैं रोज जाता था कभी कभी, तो माता जी थी वो कर रही थी, उनको पुत्र प्राप्त नहीं हुआ था, तो कर रहे थे, बड़ी श्रद्धा से कर रही थी, लेकिन कम से कम 2 ब्राह्मणों को रोज खिलाना था। तो वो खिलाती थी लेकिन उसके पति की श्रद्धा नहीं थी, क्योंकि वो जन्म से ब्राह्मण नहीं थे, ऐसे भक्ति की दृष्टि से वो ब्राह्मण थे। तो 2 खाने जाते थे रोज, तो पति कहता था ये तो रियल ब्राह्मण नहीं है, ने हमसे कहे, मैं कहा कि नहीं नहीं असली ब्राह्मण ही है, खिलाइए। तो जो खिलाते थे तो उनकी चूंकि श्रद्धा नहीं थी लेकिन स्त्री की श्रद्धा थी, वो किया उसने व्रत, उनको कोई संतान नहीं हो रही थी। जब व्रत किया तो उस स्त्री का गर्भ हुआ, बहुत खुशी छा गई। मतलब विवाह के लगभग 15-20 वर्ष के बाद की घटना, तब गर्भ हुआ लेकिन पुत्र के बदले पुत्री हो गई। हमसे पूछा उसके पति ने कि ऐसा कैसे हो गया, आपने तो कहा था कि पुत्र होगा। मैं कहा कि आपकी श्रद्धा में कमी थी इसीलिए आपकी आशा भर रह गई। उस लड़की का नाम आशा रखा गया। आशा आज वो वैष्णवी है, चूंकि वो बेटी उत्पन्न की गई थी पयोव्रत के द्वारा, तो वो विलक्षण स्वभाव है उसका। उसका भी विवाह हुआ हो गया है, तो उपायव्रत के द्वारा उत्पन्न किए गए थे व्रत कर। ये मैंने कराया है पर्सनल एक व्रत। तो जिनको कोई भी कामना हो, पुत्र की ही नहीं, धन की कामना, राज्य पाना हो, स्वर्ग पाना हो, प्रभुता पाना हो, या जो भी वोट में जीतना हो, कुछ भी करना हो, तो इस व्रत को करना चाहिए। निश्चित अमोघा भगवत भक्ति, कश्यप जी कहते हैं यह व्रत अमोघ है। तो नियम पूरा करके, स्नान आदि करके, तिलक आदि करके, समाहित चित्त से भगवान की पूजा करनी चाहिए। पूजा कहाँ करेंगे? अर्चायन, अगर भगवान का अर्चा विग्रह है तो उसके में भगवान की पूजा करनी चाहिए, अर्चायन। यदि अर्चा विग्रह नहीं प्राप्त है तो स्थंडिल है। स्थंडिल का अर्थ है भूमि में पूजन कर सकते हैं, भूमि, भूमि का मतलब होता है जमीन शुद्ध साफ सुथरा हो, उसी में भगवान की भावना करके पूजा करें, भगवान की ही पूजा करनी है। सूर्य या सूरज में पूजा करनी चाहिए, सूरज को देख क्या क्या पूजा करेंगे वो भी लिखा गया है। जले जल में, वहनव वहनी में आग में, गुरावती अथवा गुरु में भी, ऐसा भावना किया जा सकता है कि गुरु में ही भगवान है, भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। जो वस्तु अर्पित करनी है उसको गुरु में भी किया जा सकता है, जल में, अग्नि में, पृथ्वी में, सूर्य में, या अर्चा विग्रह में। तो सबसे अच्छा अर्चा विग्रह ही है, लेकर के पूजा करनी चाहिए। पूजा करते समय मंत्र क्या बोलना चाहिए, आवाहन और पुरस्चरण या अवसान, शुरुआत कैसे करें, भगवान का विसर्जन कैसे करें, पूजा और कई प्रकार के नियम है, जैसे जल देना चरण धोने के लिए या पीने के लिए, फिर भगवान को आसन देना या फूल अर्पण करना, तिलक अर्पण करना, कई बातें आएंगी। जो भी अर्पण करे उसमें ये नौ मंत्र बोलता रहे, नौ मंत्र बोले। अब शुरू में द्वादशाक्षर विद्या से कोई भी चीज काम करे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसको द्वादशाक्षर विद्या कहते हैं, यह भी महामंत्र है। कोई भी चीज अर्पण करना है, भगवान को बुलाना है या बैठाना है, पूजा देनी है, तो बोलना चाहिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इदम समर्पयामी, इदम गृहाण, ये मैं आपको अर्पित कर रहा हूं, ये लीजिए। हमेशा ये द्वादशाक्षर विद्या बोलता रहे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, आगे बताएंगे कश्यप जी। अब जो पूरे पूजा के काल में जो भगवान का मंत्र बोलना है, वो मंत्र नौ श्लोकों में यहां दिए गए हैं। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महीयसे सर्वभूत निवासाय वासुदेवाय साक्षिणे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बीच बीच में ओम नमो भगवते वासुदेवाय भी बोल सकते हैं, इसके द्वारा भगवान के गुणों को बोलना चाहिए। नमस्तुभ्यं भगवते, बहुत नमस्कार करना चाहिए, हे भगवान, हे छह ऐश्वर्यों से परिपूर्ण विष्णु, हे कृष्ण, नमस्तुभ्यं, हम आपको प्रणाम करते हैं। भगवान का गुण बोल रहे हैं, पुरुषाय, आप पुरुष हैं, आप सब तरह से परिपूर्ण हैं और बहुत दान देते हैं, आपको नमस्कार है। महीय से, आप महान हैं सब वस्तुओं में, सर्वभूत निवासाय, समस्त जीवों के हृदय में आप निवास करने वाले हैं, आप सबका पालन करने वाले हैं, सबको जन्म देने वाले हैं और सबके कर्मों के आप साक्षी हैं। सर्वभूत निवासाय वासुदेवाय साक्षिणे, कोई भी चाहे भगवान की पूजा की शुरुआत करनी हो चाहे अंत बीच, सब समय ये सब ये नौ श्लोक हैं, इनको बोलते रहना चाहिए। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महीयसे सर्वभूत निवासाय वासुदेवाय साक्षिणे, नमो व्यक्ताय सूक्ष्माय प्रधान पुरुषाय च चतुर्विंशद गुणज्ञाय गुणसंख्यान एतवे। मैं एक बार गा लेता हूं तो इसके बाद अर्थ करूंगा। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महीयसे सर्वभूत निवासाय वासुदेवाय साक्षिणे, नमो व्यक्ताय सूक्ष्माय प्रधान पुरुषाय च चतुर्विंशद गुणज्ञाय गुणसंख्यान एतवे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पूजा काल में बस ये स्तुति और भगवान का वो मंत्र बोलना है, ये भी मंत्र ही है। और भी विधि है कि प्रतिदिन कथा सुननी चाहिए भगवान की किसी वैष्णव के मुख से, और भी महामंत्र आदि जपने का जो अपना नियम है वो भी जप करें, लेकिन भगवान के कीर्तन के अलावा, श्लोक के अलावा, लीला के अलावा एक शब्द भी न बोले दूसरा, ये नियम है। नमो द्विश्रृष्णे त्रिपदे चतुःश्रृंगाय तन्तवे सप्तहस्ताय यज्ञाय त्रैविद्यात्मने नमः, नमः शिवाय रुद्राय, नमः शक्तिधराय च, सर्व विद्याधिपतये भूतानां पतये नमः, नमो हिरण्यगर्भाय प्राणाय जगदात्मने, ज्ञानैश्वर्य शरीराय नमस्ते योगहेतवे, नमस्त आदिदेवाय साक्षीभूताय ते नमः, नारायणाय ऋषये नराय हरये नमः, नमो मर्कतश्याम वप्सधिगतश्रिये, केशवाय नमस्तुभ्यं, नमस्ते पीतवाससे, त्वं सर्ववरदः पुंसां वरेण्य वरदर्शभ, अतस्ते श्रेयसे धीरा पादरेणु उपासते, अनुवर्तन्त यं देवा श्रीष्ट तत्पादपद्मयोः, स्पृहयन्तै वा मोदं भगवान् मे प्रसीदताम्। ये नौ मंत्र कोई कठिन नहीं है, इसको अर्थ समझ लेना चाहिए किसी के द्वारा और इसका जप करना चाहिए। इसके थोड़ा थोड़ा अर्थ कर रहे हैं। ध्यान रखिए कि इसमें हरेक विशेषण के बाद भगवान को प्रणाम किया गया है। पुरुषाय तुभ्यं नमः, भगवते तुभ्यं नमः, महीयसे तुभ्यं नमः। ये नमः शब्द प्रत्येक विशेषण के साथ जोड़ना चाहिए, जुड़ा हुआ है अपने आप। आपको बोलने की जरूरत नहीं है, श्लोक केवल बोलना चाहिए, वो अपने आप जुड़ जाएगा। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महीयसे सर्वभूत निवासाय वासुदेवाय साक्षिणे। हे प्रभो, आप समस्त ऐश्वर्यों से परिपूर्ण हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। और आप पुरुष हैं, सब तरह से परिपूर्ण हैं, परम दाता हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं। आप महान से भी महान हैं, सबसे महान हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। आप समस्त जीवों के हृदय में निवास करते हैं, आपको हमारा प्रणाम है। और आप ही जगत के उत्पत्ति के कारण है, आप ही पालन करते हैं, और समस्त जीवों के अनादि काल से कर्मों को, उनके भाव भाव को आप जानते हैं, आप साक्षी हैं। नमो व्यक्ताय सूक्ष्माय प्रधान पुरुषाय च, आप प्रकृति के विकार नहीं हैं, आप अव्यक्त हैं। अव्यक्त का अर्थ होता है जो प्राकृत भूतों का विकार नहीं है। संसार में जो कुछ भी वस्तु है तो पंच महाभूतों से बनी है, इसको व्यक्त कहते हैं। लेकिन वास्तव में भगवान अव्यक्त हैं। अव्यक्त का मतलब है प्राकृत वस्तुओं के रूप से उनका शरीर वगैरह नहीं बना है। तो आप दिव्य हैं, आप सूक्ष्म हैं। सूक्ष्म का अर्थ है कि आपके स्वरूप को समझना बहुत कठिन है। प्रधान पुरुषाय च, आप ही उपादान कारण है इस विश्व के, प्रकृति है। प्रधान का अर्थ है प्रकृति और पुरुष का अर्थ है पुरुष, भोक्ता। आप ही इस विश्व प्रपंच के सबके भोक्ता हैं, स्वामी हैं, और आप ही उपादान कारण हैं, प्रकृति हैं। और चतुर्विंशत जो प्रकृति के गुण हैं, 24, उसके ज्ञाता भी आप ही हैं, और गुणों के संख्या करने वाले, उनका लक्षण आदि बताने वाले सब आप ही हैं। गुण का मतलब है प्राकृत पदार्थ। तो इस श्लोक में भगवान कपिल देव की वंदना की गई है। भगवान ने श्रीमद् भागवतम में, कपिल देव भगवान ने प्रकृति के 24 तत्वों का लक्षण सब कुछ बताया है। तो चतुर्विंशत गुणज्ञाय, 24 प्रकृति के गुणों की उपज को, उनके तत्व को आप जानते हैं, और आप ही सांख्य शास्त्र का निर्माण किए हैं जिसके द्वारा व्यक्ति प्रकृति से अलग आत्मा को समझ लेता है। यहां तक समान रूप से भगवान की वंदना किए। अब गुणावतार की वंदना कर रहे हैं। तीन गुणावतार हैं, तीन गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो इन तीनों गुणों को कंट्रोल करने के लिए भगवान तीन रूप में अपने को व्यक्त करते हैं। सत्वगुण के द्वारा वे इस विश्व का पालन करते हैं, रजोगुण के द्वारा उत्पत्ति करते हैं, और तमोगुण को स्वीकार करके, उसको अपने हाथ में रख करके भगवान इस जगत का विनाश करते हैं, संयम में रखते हैं। तो भगवान के तीन गुणावतारों की वंदना इसमें दी गई। आगे
नमो द्विशीर्षणे त्रिपदे चतुःश्रृंगाय तन्तवे सप्तहस्ताय यज्ञाय त्वयि विद्यात्मने नमः।
भगवान विष्णु को यज्ञ के रूप में यहां कहा गया है। यज्ञ से जगत का हित होता है, तो यज्ञ स्वरूप भगवान को शास्त्र में एक वृषभ बैल के रूप में तुलना में क्या
रूपक धर्म का स्वरूप ही वृषभ के रूप में है।
आपने पृथ्वी और धर्म के संवाद में देखा कि गाय और बैल के बीच संवाद हो रहा है, जो महाराज परीक्षित ने देखा था। तो हे प्रभु, हे विष्णु, हे जगत के पालन करता है, आप साक्षात यज्ञ हैं। आपके दो शीर्ष हैं, दो सिर हैं आपके धर्म के, तो आवाहनीय और उदयनीय ये यज्ञ के दो कुछ काम होते हैं। तो ये दो जो यज्ञ के काम है वे आपके दो सिर हैं, त्रिपद है, और आपके तीन पैर हैं। तीन जो समन है, प्रातः, दोपहर और सायं, इनको यज्ञ का तीन पैर कहा गया है। और चतुःश्रृंगाय और चार वेद आपके सिंह हैं, और तंतवे आप यज्ञ फल का विस्तार करते हैं। अब सप्तहस्ताय और आपके सात हाथ हैं। सप्तहस्ताय का मतलब है कि अग्नि के सात जिह्वा हैं, ऐसा माना गया है। सात जीव से वे खाते हैं। यज्ञाय, हे यज्ञ स्वरूप विष्णु, यज्ञम वै विष्णु, विष्णु वै यज्ञ, यज्ञ का मतलब ही है भगवान विष्णु। त्रय विद्यात्मने नमः, तीनों वेदों में जो विद्याएं कही गई हैं उनके अध्ययन करने से ही आपके स्वरूप का पता चलता है। वेदों के द्वारा आपके स्वरूप का पता चलता है, भगवान विष्णु की इसमें वंदना की जा रही है। अब यहां पर इतना समय नहीं है कि बहुत व्याख्या किया जाए। नमः शिवाय रुद्राय, अब तमोगुण के अधिष्ठाता भगवान शिव की वंदना की जा रही है। भगवान कृष्ण ही अपने को शिव जी के रूप में व्यक्त करते हैं। नमः शिवाय, हे जगत का कल्याण करने वाले आपको नमस्कार है। और फिर कह रहे हैं नमः रुद्राय, और हे जगत का ध्वंस करने वाले आपको नमस्कार। शिव का अर्थ है पालन करने वाला, कल्याण करने वाला, और रुद्र का अर्थ है ध्वस्त करने वाला। ये व्यक्ति एक ही है लेकिन दोनों काम करते हैं, विश्व का पालन भी करते हैं। पालन का जब समय होता है तो पालन करते हैं। और रुद्राय, तो प्रश्न होगा कि एक ही व्यक्ति ये भिन्न भिन्न काम क्यों कर रहा है। कहते हैं नमः शक्ति धराय, इस प्रकार की शक्तियों को धारण किए हैं, पालन भी करते हैं, विनाश भी करते हैं। सर्व विद्या अधिपते, और वेदों में वर्णित समस्त विद्याओं के आप अधिपति हैं। यदि किसी को विद्या चाहिए तो भगवान शिव से मांगना चाहिए, और सबसे बड़ी विद्या है भक्ति। भक्ति के और जितनी भी विद्या है, जैसे भगवान चैतन्य महाप्रभु ने राय रामानंद से पूछा कि विद्या मध्य कौन विद्या श्रेष्ठ है, सब विद्या में कौन विद्या सबसे श्रेष्ठ है। राय रामानंद कहते हैं कृष्ण भक्ति बिना, और कृष्ण भक्ति, राय कहे कृष्ण भक्ति बिना विद्या नहीं यार, कृष्ण भक्ति के अलावा और कोई विद्या नहीं है। ये विद्या सिद्धिया नहीं है दूसरी, ये सब अविद्या है। वास्तव में विद्या ये कहीं है कि भगवान का नाम रटा जाए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पर जो भी विद्याएं हैं भगवान विष्णु उसको शिव जी के रूप में पालन करते हैं, दान देते हैं, समस्त विद्याओं के वे अधिपति। भूता नाम पतये नमः, और समस्त जीवों के पालक हैं भगवान शिव। भूता नाम से यहां घोष्ट नहीं है, भूत प्रेत अर्थ नहीं, भूता नाम जीवा नाम, समस्त जीवों के पालक हैं शिव जी के रूप में, पालन पोषण करते हैं। ये विद्या दे करके पालन करते हैं, भक्ति सिखा करके पालन करते हैं, कई तरह से, या कोई वस्तुएं दे करके पालन करते हैं। भूत को कभी कभी पशु भी कहा गया है, जीव को भूत भी कहते हैं और पशु भी कहते हैं, तो भगवान शिव पशुपति कहे जाते हैं।
पशुपति का अर्थ मतलब जीवा नाम पति पशुपति, पशु नाम जीवा नाम पति पालक पशुपति, भगवान शिव पशुपति हैं। तो पशुपति का मतलब ये नहीं है कि 200-400 गाय भैंस चराते रहते हैं, पशुपति। इस विषय में अगर पशु अर्थ किया जाए तो भगवान कृष्ण और भगवान शिव एक ही काम करते हैं, वो भी गोप है और ये भी पशुप है, पशुपति। पशु का अर्थ जीव, जीवों का पालन करते हैं। भूतानाम पते नमः, नमो हिरण्य गर्भाय। अब गुणावतार में ब्रह्मा जी की वंदना कर रहे हैं, मतलब ब्रह्मा जी के रूप में भगवान विष्णु की वंदना की जा रही है, शिव जी के रूप में भगवान विष्णु की वंदना की जा रही है, और उनके स्वरूप में तो होती ही है। नमो हिरण्य गर्भाय, ब्रह्मा जी का एक नाम ही है, है हिरण्य गर्भ, ब्रह्मांड जिनके गर्भ में है, ऐसे प्रभु को मैं नमस्कार करता हूं, जो जगत के प्राण हैं, पोषक हैं, जगदात्म ने इस जगत के कंट्रोलर हैं। जोगई स्वर्ग शरीर आया, भगवान ने ब्रह्मा जी योग से ऐश्वर्य और शरीर प्राप्त किए हैं, जो भी इनका बड़ा पद है वो योग करके भक्ति करके तप पाए हैं। यह योग का अर्थ है भक्ति। ब्रह्मा जी का जो शरीर है वो बिल्कुल भक्तिमय है, इसलिए इनको योगई स्वर्ग शरीर आया, योग ऐश्वर्य और योग शरीर। अथवा इसका अर्थ यह है कि आप योग से शरीर बदल सकते हैं। तृतीय स्कंध में एक कथा है कि ब्रह्मा जी कई बार शरीर बदल रहे हैं, कई बार बदल रहे हैं, नया शरीर पा रहे हैं। तो योग के द्वारा, भगवान की भक्ति के द्वारा ब्रह्मा जी ऐश्वर्य प्राप्त किए हैं और शरीर प्राप्त किए। नमस्ते योग हे तवे, और श्री ब्रह्मा जी के रूप में भगवान विष्णु योग का प्रवर्तन करते हैं। प्रवर्तन का अर्थ चालू करते हैं, प्रचार करते हैं। योग का अर्थ हमेशा भक्ति योग समझना चाहिए, भक्ति योग के आचार्य हैं ब्रह्मा जी। चार संप्रदाय बहुत प्रसिद्ध हैं, जिसमें पहला है ब्रह्मा जी ने संप्रदाय चलाया भगवान की उपासना का, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो ब्रह्मा जी को योग हेतु कहा गया, भक्ति योग के यही मूल शिक्षक हैं, गुरु हैं ब्रह्मा जी। उन्होंने जगत में भक्ति का प्रचार किया, भगवान कृष्ण की भक्ति का प्रचार उन्होंने किया, इसलिए इनकी वंदना की जा रही है। तो इस स्तुति में इस तरह वंदना हुई, प्रार्थना हुई तीनों गुणावतार से। अब स्वयं भगवान कृष्ण से वंदना की जा रही है। नमस्ते आदि देवाय साक्षी भूताय ते नमः, नारायणाय ऋषये नराय हरये नमः। आदि देव, आदि पुरुष भगवान विष्णु को, कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूं। साक्षी भूताय ते नमः, जो समस्त विश्व के साक्षी हैं। साक्षी का अर्थ है कि इनकी आंख सब जगह है, सब जगह इनकी आंख है, सब कुछ देख रहा है, यही अध्यक्ष है। और हे नारायण, आपको नमस्कार है। अथवा नारायण आय ऋषय नराय हरय नमः, हे नर नारायण, ऋषि के रूप में अवतार लेकर जगत के हित के लिए विविध तपस्या, इंद्रिय संयम आपने सिखाया, और हे भक्तों का क्लेश हरने वाले हरि, हम आपको नमस्कार करते हैं। ये सब बातें पढ़ने पर कुछ खास निर्धारित नहीं होता है कि आप किसका भजन कर रहे हैं। तो आप क्लियर बोलते हैं, नमो मरकत श्याम बपसेधिगत श्रीय केशवाय नमस्तुभ्यम नमस्ते पीतवाससे। हे प्रभो, मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपका शरीर नील मरकत मणि के समान है, सांवला शरीर है भगवान का, इस बिल्कुल स्पष्ट वर्णन। हे प्रभो, आपका सांवला शरीर है, अधिगत श्रीय आपके वश में लक्ष्मी जी हैं, आपने लक्ष्मी जी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया है, अर्थात विश्व में जो भी धन है आपके अधिकार में है, अधिगत श्रीय। अधिगत का अर्थ है बिल्कुल कंट्रोल में, भगवान के कंट्रोल में सारा धन है, सब कुछ। केशवाय नमस्तुभ्यम, हे ब्रह्मा और शिव के भी अधिपति, आपको मैं प्रणाम करता हूं। नमस्ते पीतवास से, हे पीला वस्त्र पहनने वाले, आपको मैं प्रणाम करता हूं। भगवान पीताम्बर धारण करते हैं, भगवान का स्वभाव है पीला वस्त्र पहनते, नमस्ते पीतवास से, भगवान के काला साला वस्त्र बिल्कुल प्रिय नहीं, काला वस्त्र नहीं पहनते, पीला पहनते हैं। कोई एक भक्त तो एक बार कहे कि वो खुद काला है तो काला पहनेंगे तो भूत जैसा लगे, नहीं ऐसी बात नहीं है, जैसे लोग पीला पहनते हैं ऐसे अपने अपने मन के भाव से भक्त लोग बोल देते हैं, नहीं भगवान को एक पीला वस्त्र बहुत पसंद है। भगवान की परंपरा में आने वाले भक्त जन भी प्राय पीला पहनते हैं। नमस्ते पीत वासस, वासस मने कपड़ा, हे पीला कपड़ा पहनने वाले आपको नमस्कार। ये भगवान के शौर्य को बता रहा है, तुम सर्व वरदः पुंसं वरेण्य वरदर्शम। अब इस श्लोक में गायत्री मंत्र को क्लियर किया जा रहा है, हम सविता के वरेण्य भोग का ध्यान कर रहे हैं, गायत्री में यह बताया गया है, तो उसी को क्लियर किया जा रहा है। तुम सर्व वरदः, आप सारा वर देने वाले हैं, दुनिया में जो कुछ भी स्वर्ग अपवर्ग या धन जस जो भी है आप देने वालों में सबसे श्रेष्ठ हैं, आप ही देते हैं। तुम सर्व वरद पुंसा, मनुष्यों को जीवों को आप सब कुछ देते हैं, वरेण्य और आप ही जीवन में वरण करने योग्य है, आपको ही अपना मानना चाहिए किसी व्यक्ति को। यदि किसी को चुनना हो कि मैं किसको अपना बनाऊं तो आप ही वरेण्य हैं, आपके अलावा कोई दूसरा वरेण्य नहीं है। अपने जीवन में अपने रक्षक के रूप में, अपने स्वामी के रूप में, अपने प्रियतम के रूप में, अपने आश्रय के रूप में, शरण के रूप में आप ही वरेण्य हैं, आपका ही वरण करना चाहिए। हे वरदर सभा, वर देने वालों में, आशीर्वाद देने वालों में आप ही सबसे श्रेष्ठ हैं। अतस्ते श्रेष्ठ धीरा पाद रेणु उपासते, इसीलिए धीर लोग जो धैर्य रखते हैं, भक्ति करते हैं, वे लोग आपके ही चरण धूलि की उपासना करते हैं। अतः ते तव श्रेयस, अपने श्रेयस के लिए, कल्याण के लिए, चाहे स्वर्ग के लिए या अपवर्ग के लिए, मुक्ति के लिए, आपके धाम के लिए, आपके ही चरण रेणु की उपासना करते हैं। अतस्ते श्रेयसे धीरा पाद रेणु उपासक, जितने भी महान लोग हैं, मनीषी हैं, विद्वान हैं, वे अपने श्रेय प्राप्ति के लिए, कल्याण के लिए ते पाद रेणु उपासक, आपके चरण धूलि की उपासना करते हैं। चरण धूलि मतलब चरण की उपासना करते हैं, अथवा वृंदावन में पड़े हुए रज की उपासना करते हैं। वृंदावन धाम ही वास्तव में धन देने वाला सबसे श्रेष्ठ धाम है, वहीं जाकर ध्रुव महाराज को ध्रुव लोक मिला हुआ है। ध्रुव महाराज मधुवन में तपस्या किए थे, भजन किए थे, और नारद जी ने भेजा था कि जाओ स्थान जल्दी सिद्धि देगा। तो आज तक दुनिया में सबसे धनी कोई हुआ है तो वृंदावन वाला हुआ है, वृंदावन में जाकर के धन मिला, मधुवन में तपस्या करने से 6 महीना तक तपस्या और ध्रुव लोक मिला। तो पाद रेणु, वैसे तो यह आदर सूचक शब्द है कि पाद माने चरण, धूली माने धूली, रेणु माने धूली। भगवान विष्णु के चरण धूलि की उपासना से ही सब कुछ मिलता है, और जो धीर है, जो विद्वान है, मनीषी हैं, वे लोग भगवान विष्णु का भजन करते हैं। जो धीर नहीं है, अधीर है, वही लोग दूसरे जगह भटक जाते हैं वास्तव में, जिनको ज्ञान नहीं है। लेकिन धीर जन तो अपने श्रेय प्राप्ति के लिए, चाहे मुक्ति के लिए, चाहे वैकुंठ के लिए, या स्वर्ग के लिए, या इस पृथ्वी पर भी धन आदि लेने के लिए भगवान के चरण धूलि की उपासना करते हैं, क्योंकि आप ही सबसे श्रेष्ठ हैं। अनुवर्तन्त यम देवा श्रिष्ट तत्पाद पद्म, यह लास्ट मंत्र है कि जितने भी देवता हैं, ब्रह्मा जी, भगवान शिव, ये सब लोग आपके पीछे चलते हैं। जम अनुअवर्तन्त, अनुअवर्तन्त यम देवा, देवा मतलब ब्रह्मा शिवादि देवगण, जिनके पीछे चलते हैं, जिनकी का अनुगमन करते हैं, सेवा करते हैं, श्री च और स्वयं लक्ष्मी जी, श्री जी, श्री जी जो समस्त धन की अधिष्ठात्री देवी हैं, जिनके कृपा से लोग खा रहे हैं, घर बना रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, कोई भी व्यक्ति, ये लोक में इतना धन फैला हुआ है, वैकुंठ में अनंत धन है, और इन समस्त संपत्ति की स्वामिनी कौन है? श्री जी। तो श्री जी और ब्रह्मा जी और भगवान शिव आदि सभी देवता भगवान के चरण कमलों के पीछे चलते हैं। ऐसा लगता है कि तत्पाद पद्मयो हो स्पृहंत आमोदम, लगता है कि भगवान के चरण कमलों के आमोद को, सुगंध को पाने के लिए लोग ललचते हैं। और वही वास्तविक बात है, भगवान के चरण कमल से दिव्य सुगंध निकलता है, बहुत सुंदर गंध। तो आमोदम अस्पृहंत लगता है कि ब्रह्मा जी, भगवान शिव या श्री जी या अन्य कोई देवता या भक्तजन भगवान के पाद पद्मयो आमोदम, भगवान के चरण कमलों के आमोद को, गंध को अस्पृहंत स्पृहा कर रहे हैं, होर लगी रहती है। पृथ्वी महाराज ने तो यहां तक कहा है कि ये लक्ष्मी जी को जब अपने वक्षस्थल पर स्थान दिया है तो वो चरण में क्यों आती है? चरण तो हम दासों के लिए है ना। अब प्रिया जी को भगवान ने अपने छाती पर स्थान दिया है, परंतु लक्ष्मी जी छाती पर रहती नहीं है, वो जब देखिए तो नारायण के चरण में ही रहती है, चरण संवाहन करती है, चरण दबाती रहती है। पृथ्वी महाराज कहते हैं कि कभी झगड़ा हो सकता है लक्ष्मी जी से, यदि झगड़ा होगा भक्तों का तो वो कहेंगे कि आप अपने स्थान पर जाइए, आप भगवान के छाती पर रहिए, चरण दबाने का हमारा अधिकार है। तो पृथ्वी महाराज भागवत में कहते हैं भगवान से ही कि यदि श्री जी के साथ हम दासों का झगड़ा होगा अपना हक पाने के लिए, तो हे प्रभु हम जानते हैं कि आप हम लोगों का पक्ष लेंगे, हम दीनहीन भक्तों का पक्ष लेंगे, और श्री जी को कह देंगे कि तुम छाती पर चली जाओ। तो ब्रह्मा जी, शिव जी भगवान के चरण पद्म के, चरण कमल के गंध के लुब्ध होकर ऐसा लगता है स्पृहंत युवा, लगता है कि चरण कमल के गंध से लड़ाए थे। चरण कमल के गंध का मतलब है चरण कमल की सेवा, सेवा करने के लिए ललचते रहते हैं, दास बनने के लिए। और श्री जी, इतना भगवान के चरणों में सुगंध है और चरण सौभाग्य के स्थान है, जो व्यक्ति उन चरणों से संबंध कर ले अर्थात कृष्ण का दास बन जाए तो सौभाग्य तो उसका चरण चुमेगा, वो सब जगह सफल होगा, वो सुखी रहेगा और अंत में भगवान का धाम प्राप्त करेगा। तो कश्यप जी यह स्तुति करते हुए कह रहे हैं, वास्तव में स्तुति ब्रह्मा जी बोले होंगे कि अन्ववर्तन्त यम देवा श्रीश्च तत्पाद पद्मयोः स्पृहन्त आमोदम भगवान में प्रसीदताम, सारे देवता और लक्ष्मी जी सब जिनके चरण कमलों के दास हैं और वही प्रभु हम पर प्रसन्न हो, भगवान हम पर कृपा करें। तो इस तरह मंत्रों को पढ़ पढ़ करके क्या करना चाहिए, एतैर मंत्रैर हृषिकेशम आवाहन पुरस्कृतम और चेत श्रद्धया युक्त पाद्योस्पर्शनादि। एतैर मंत्र, इन मंत्रों से भगवान हृषिकेश इंद्रियाधिपति भगवान का आवाहन करे, पहले बुलावे और पुरस्कृतम स्वागत करे, पहले भगवान को बुलाना चाहिए। बुलाने के मंत्र अलग से बोलने की जरूरत नहीं है, बस यही कोई भी श्लोक बोलता रहे, हमेशा बारी बारी से बोलता है, जब तक पूजा करना हो पूरा बोलता रहे। जैसे उसमें आता नमस्त नमस्तुभ्यम भगवते पुरुषाय महीयसे सर्वभूत निवासाय वासुदेवाय साक्षिणे, भगवान के लिए आसन देना या जो कुछ भी करना है इन मंत्रों को बोलते रहना चाहिए, श्लोकों को। ये तई मंत्र है हृषिकेशम आवाहन पुरस्कृतम, भगवान का आवाहन करे, उनका स्वागत करे, पाद्य अर्पित करे, जल अर्पित करे, उसके बाद अर्चेत श्रद्धया युक्त अर्चना करे, श्रद्धा के साथ पूजा करे, परम आनंद के साथ पाद्य उपस्पर्शन आदि भी। तो भगवान को पाद्य अर्पित करे, पाद्य का अर्थ होता है जल, पैर धोने के लिए जल देना और अर्घ देना, पीने के लिए जल देना, उपस्पर्शन भगवान का स्पर्श करना चरणों का, और कई पूजा स्वागत किया जाता है। और इस तरह से अर्चित्वा जल आदि दे करके इसके बाद गंध माल्याद्यी पयसासन वेद विभु, तो भगवान को स्नान करावे। गंध माल्यादि पहले पयसासन वेद विभु दूध से भगवान को स्नान करावे, दूध से स्नान करा करके फिर भगवान को अर्पित करे गंध माल नहीं, भगवान को पहले गंध दे अगरबत्ती, आजकल तो गंध का यही अर्थ होगा, या सेंट और फूल आदि अर्पित करे। अर्पित करके जैसे अभिषेक कराया जाता है रोज में, तो पहले भगवान की आरती करते हैं, अगरबत्ती दिखाते हैं, फिर भगवान पर चंदन लगाते हैं, माल कुछ चंदन नहीं लेकिन कुछ ऐसा तेल लगाते हैं स्नान के पहले, ये सब लगा करके फिर स्नान करावे दूध से भगवान को। और स्नान कराने के बाद फिर जल से स्नान करावे, दूध से स्नान करके छोड़ नहीं देना चाहिए, नहीं तो चींटियां अड्डा जमा लेंगी भगवान के देह पर। दूध को फिर साफ करना चाहिए जल से, और स्नान करा करके जल से फिर वस्त्र उपवीत भगवान को अर्पण करना चाहिए, नया वस्त्र और जनेऊ आभरण गहना पाद उपस्पर्शन और ऐनक दिखाना, दर्पण दिखाना और चरण छूना, गंध धूपाधिश्चार्य द्वाद साक्षर विद्या, तो गंध धूप आदि अर्पित करें, और जो आरती करनी है सेवा वस्त्र आदि देना है दे, इसको वो इन मंत्रों से कर सकता है अथवा द्वाद साक्षर विद्या से भी कर सकता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र के द्वारा कर सकता है। और श्रितम पयसि नैवेद्यम क्या हो गया, प्रसाद चालू हो गया, भगवान को पूजने की बात की जा रही है, सुनने में आनंद आना चाहिए। श्रितम पयसि नैवेद्यम साल्यन्नम विभवे सति सर्पी सगुडम दत्वा जुहियन मूल विद्या, दूध में बासमती राइस पकाना चाहिए, सालियन चावल, अगर विभवे शक्ति अगर धन है पर्याप्त धन है तो उसमें घी डालना चाहिए, सगुडम और गुड़, गुड़ और घी डालना चाहिए, बहुत अच्छा खीर बना करके मूल विद्या के द्वारा हवन करना चाहिए। मूल विद्या मतलब ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र के साथ अग्नि में हवन करना चाहिए, और जपेत अष्टोत्तर शतम और 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना चाहिए, हवन करके जप करना चाहिए, और स्तुत स्तुति भी प्रभु, और जो स्तुति यहां लिखी गई है उसके द्वारा या किसी और स्तुति के द्वारा भगवान की स्तुति करे, और स्तुति करके इसके बाद परिक्रमा करे, कृत्वा प्रदक्षिणम, प्रदक्षिणा करके भूमौ प्रणवे दंडवत मुदा, और पृथ्वी पर दंड की तरह प्रणाम करे। दंडवत इसको कहते हैं, दंड मतलब डंडा, डंडा को ऐसे खड़ा करेंगे और गिरेगा तो सीधा गिरेगा, तो प्रणाम ऐसे करना चाहिए कि हाथ आगे हो जाए पैर पीछे, दंडवत प्रणाम करना चाहिए भगवान को, और भी मुदा आनंद के साथ प्रणाम करना चाहिए, खुशी से, यह नहीं कि केवल कर्तव्य पूरा करने के लिए और भार मान करके करे, आनंद से प्रणाम करना चाहिए। कृत्वा शिरसि तच्छे शाम देव मुद्वासे ततः, इसके बाद भगवान को जो माला अर्पित किया गया है, जो वस्त्र अर्पित किया गया है, जो माला आदि उतारना है, तो उतरे हुए माला आदि फूल को अपने सिर पर ले, सिर पर लेना चाहिए, सूंघना चाहिए, तब इसके बाद भगवान का उद्वासित, उद्वासित का अर्थ है कि भगवान को फिर सुला देना चाहिए, विसर्जन करना चाहिए, विश्राम देना चाहिए। और द्वि अवरान भोजित विप्रान पायसन यथोचितम, कम से कम दो ब्राह्मणों को भोजन करावे, जिस भोजन में पायस मुख्य होना चाहिए, जो पायस मुख्य होना चाहिए, जो पकाया गया है और तरह से बहुत अच्छा से घी और गुड़ डाल करके पकाया गया है शुद्ध दूध में, तो द्वि अवरण कम से कम दो, मतलब एक तो नहीं होना चाहिए, दो तीन चार पांच जो भी हो जाए ठीक है, लेकिन दो से कम नहीं, द्वि अवरण दो से कम नहीं ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, मतलब कम से कम दो। तो कम से कम का अर्थ ही है कि अगर मतलब कम करते गया तो दो दो से कम नहीं, ये शास्त्र बोल रहा है। तो उनको भोजन कराए, उनको भोजन केवल दूध से न करावे, पायस खिलावे, उनको रोज बहुत अच्छा पकवान बनाना चाहिए उनके लिए। जो जो व्रत कर रहा है वो नहीं पकाएगा, उसके स्वजन दूसरा पकाएगा, फिर बेटी पकाएगी या पति पकाएंगे या बेटा पकाएगा, बेटे तो क्या पकाएंगे तो दूसरे लोग स्वजन पकाएंगे, उनको ब्राह्मण को खिलाना चाहिए अच्छा। भुंजित तैरनु ज्ञात शेषम श्रेष्ठ स्वभावित, और उन ब्राह्मणों से अनुमति लेकर के बाद में अपने परिवार के साथ और मित्रों के साथ खाना चाहिए। प्रथम दिन की बात बता रहे हैं, अमावस्या की रात से ब्रह्मचार्य तद रात्रां स्वभूते प्रथमे हानि, उस दिन से प्रथम दिन से ही ब्रह्मचारी रहना चाहिए, व्रत के अंतिम दिन तक ब्रह्मचारी होना चाहिए, स्त्री पुरुष का परस्पर संग नहीं होना चाहिए, ये बता रहे हैं। ब्रह्मचार्य तद रात्रां स्वभूते प्रथमे हानि स्नाता सुचित यथोक्ते न विधना सुसमाहित, जैसी विधि बताई गई है शास्त्र में वैसे स्नान करे, समाहित हो और भगवान को दूध से स्नान करावे। जावत व्रत समापनम, जब तक व्रत पूरा नहीं होता तब तक इन नियमों का पालन करना है। निवेदितम तब भक्ता है दद्यात भुंजित वाष्मेन, और जब भगवान को प्रसाद अर्पित किया गया, भोग अर्पित किया गया है, वो भगवान के भक्तों को दे। तद भक्ता है, सबसे पहले भगवान के भक्तों को देना चाहिए, अगर कोई भक्त न मिले तो खुद खाना चाहिए। लिखा गया भुंजित वा स्वयं दत्वा आचमनम अर्चित्वा तांबूलम च निवेद, और भगवान की पूजा करने के बाद, उनको खिलाने के बाद, भोग अर्पित करने के बाद, उनको आचमन करावे भगवान को, और आचमन करा करके तांबूलम च निवेदेत पान खिलावे भगवान को, तांबूल खिलाना चाहिए। पयो भक्षो व्रत निदम चरेत विष्णु अर्चनार्दित पूर्वत जो हियाद अग्नि ब्राह्मणा चानुम भोजे, इसको पयो भक्ष व्रत कहते हैं। व्रत करने वाला दूध पीकर के करता है, विष्णु का अर्चन है, बहुत आदर के साथ श्रद्धा के साथ भगवान की पूजा करनी चाहिए। पहले जैसा कहा गया वैसे रोज अग्नि में हवन करे, ब्राह्मणों को रोज भोजन करावे और भगवान की पूजा करे, तीन काम। एवं त्वरह कुर्जा द्वादशाम पयोव्रत, दूध का आहार करके 12 दिन तक प्रतिदिन ये करना चाहिए। हरे राधा राराधनम भगवान की आराधना, होमम और हवन करना, अर्हणम पूजा करना, द्विज तर्पणम भगवान को खिलाना, भगवान की पूजा करना और द्विज तर्पणम और हवन प्रतिपद दिन मारभ्य जावत शुक्ल त्रयोदशी, प्रतिपदा से प्रारंभ करके शुक्ल मतलब फागुन शुक्ल पक्ष एकम से चालू करके और त्रयोदशी तक ये व्रत करना चाहिए, और इतना दिन ब्रह्मचर्यम अधः स्वप्नम स्नानम त्रिश्रवणम चरत, ब्रह्मचारी रहे और नीचे सोवे जमीन पर और तीन बार स्नान करे सवेरे दोपहर शाम, इस तरह शुद्ध रहकर भगवान का व्रत करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए ये भी बता रहे हैं। वर्जयत असदालापम, असत आलाप न करे, बाहरी मैटेरियल लोगों से कोई बात न करे, कभी झूठ न बोले, असत आलाप किसी से न करे। भोगान उच्चा वचन तथा, और भोग चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, भोग न भोगे, छोटा भोग जैसे गधा पर चढ़ना छोटा भोग है और हाथी पर चढ़ना बड़ा भोग है। कोई न तो हाथी घोड़े की सवारी करना है और न तो हीन, कोई भी छोटा या बड़ा भोग हो, भोगों को न भोगे, जो व्रत कहा गया वही करे। अहिंसा सर्वभूता नाम, किसी जीव की हिंसा न करे, किसी जीव को तकलीफ न दे, वासुदेव परायण, हमेशा भगवान के शरण में रहे, इस तरह से व्रत करे। और भी त्रयोदशी के दिन क्या क्या करना है, फेस्टिवल जैसा करना है, बहुत लोगों को खिलाना पिलाना, उसका वर्णन कल करेंगे। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद।